آگے سبق دیکھیے بھائی. باب الرهن عند عدل يتم الرهن بقبض عدل شرط وضعه عنده هذا عندنا وقال مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة لا يجوز لأن يده يد المالك ولهذا يرجع عليه عند الاستحقاق فانعدم القبض قلنا يده على الصورة يد المالك وفي المالية يد المرتهن لأن يده يد زمان والمزمون المالية فنزل منزلة شخصين. باب الرهن عند عدل, یہ باب ہے اس رہن کے بیان میں جو کسی عادل آدمی کے پاس رکھوایا جائے. مثلا زید نے عمر سے دین لیا اور عمر نے رہن کا مطالبہ کیا اور زید نے کہا میں رہن تمہارے پاس تو نہیں رکھوا سکتا, ہاں بکر جو ہے اس کے پاس رہن رکھوا سکتا ہوں. تو چنانچہ زید اور عمر یعنی راہن اور مرتہن دونوں نے اتفاق کر لیا اور وہ رہن کس کے پاس رکھوا دیا؟ بکر کے پاس. تو بکر جو ہے وہ ہے عادل بھائی, یعنی عادل قابل اعتماد آدمی. اور آگے اس کے بارے میں بتلائیں گے کہ اس عادل آدمی کا قبضہ بھی مرتہن کی طرح ہے, لہذا اس کے پاس اگر رہن ہلاک ہو گیا تو زمان آئے گا مرتہن پر بھائی, اور وہی زمان جو پہلے ذکر ہو چکا کہ دین اور رہن کی قیمت میں سے جو اقل ہوگا وہ زمان اس پر آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی. تو اس باب میں اس کا بیان ہوگا. کہتے ہیں باب الرہن عند عدل, یہ باب ہے اس رہن کے بیان میں جو عدل کے پاس یعنی عادل آدمی کے پاس رکھوایا جائے. یتم الرہن بقبض عدل شرط وضعه عنده هذا عندنا. بھائی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عقد رہن جو ہے وہ ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے, لیکن تام تب ہوگا, کامل تب ہوگا جب مرتہن رہن پر قبضہ کر لے. اور یہاں پر جو میں نے بتلایا کہ عدل جو ہے وہ کس کے قائم مقام ہے؟ مرتہن کے قائم مقام ہے, لہذا عادل آدمی جب اس پر رہن پر قبضہ کر لے گا تو عقد رہن تام ہو جائے گا. زید نے عمر سے دین لیا ہے اور عمر نے اس کے بدلے میں رہن رکھوانے کا مطالبہ کیا اور پھر ان دونوں نے عقد رہن ہی کے اندر شرط لگا دی, طے کر لیا کہ اس رہن کو کس کے پاس رکھوایا جائے گا؟ بکر کے پاس. تو دیکھو عقد کے اندر ہی شرط لگا دی کہ یہ رہن بکر کے پاس رکھوایا جائے گا. تو جب بکر کے پاس یہ رہن رکھوا دیں گے تو عقد رہن تام ہو جائے گا. پہلے تو کیا تھا, عقد منعقد ہوا تھا لیکن تام نہیں ہوا تھا, اب تام ہو گیا, کامل ہو گیا, پورا ہو گیا جب عدل کیا کر لے گا, اس پر قبضہ کر لے گا. تو یہی بتلا رہے ہیں, کہتے ہیں یتم الرہن, تام ہو جاتا ہے رہن یعنی عقد رہن, کامل ہو جاتا ہے عقد رہن بقبض عدل, عادل آدمی کے یعنی قابل اعتماد آدمی کے قبضہ کرنے سے. شرط فعل آ گیا اور نکرہ کے بعد فعل آیا, اور عادل نکرہ ہے اور اس کے بعد شرط فعل آیا, اور میں نے بتلایا تھا نکرہ کے بعد فعل آیا تو وہ اس کے لیے عموماً صفت بنتا ہے. اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں. اب دیکھیے ترجمہ, یتم الرہن بقبض عدل شرط وضعه عنده, تام ہو جاتا ہے عقد رہن قبضہ کرنے سے ایسے عادل آدمی کی شرط لگائی گئی تھی اس کے پاس رکھوانے کی. شرط وضعه, شرط لگائی گئی تھی رہن کو رکھوانے کی, عندہ اس عادل آدمی کے پاس. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ پھر دیکھیں یتیم الرہن بقبض عادل شرط وضعه عندہ, عقد رہن تام ہو جاتا ہے ایسے عادل آدمی کے قبضہ کرنے کی وجہ سے کہ شرط لگائی گئی تھی رہن کے رکھوانے کی, عندہ اس عادل آدمی کے پاس. ہادا عندنا, یہ ہمارے نزدیک ہے, ہمارے نزدیک رہن تام ہوگا جب عادل اس پر قبضہ کر لے گا. وقال مالک رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا لا یجوز, امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں, عادل کے پاس رہن رکھوانا جائز نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں لئن یدہ ید المالک, اس لیے کیونکہ عادل کا جو قبضہ ہے यदुल मालिकी, वो मालिक ही का कब्जा है। वो फरमाते हैं कि देखो ये जो रहन पर आदिल आदमी ने कब्जा किया, चीज को अपने कब्जे में ले लिया, अपने पास रख लिया, तो यह आदिल आदमी का कब्जा दर असल मालिक ही का कब्जा है। किसका कब्जा है? मालिक, यानी जैद, जैद जिसने अपनी चीज रहन के तौर पर रखवाई है, जो मदियून है, जिस पर कर्जा है। आमर ने क्या कहा था जैद से कि तुमने देन लिया है, देन लेना है तो उसके बदले कोई चीज रहन रखवाओ। तो जैद जो गाड़ी का मालिक है, उसने अपनी गाड़ी किसके पास रखवा दी? बकर, यानी आदिल आदमी के पास। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो बकर यानी आदिल आदमी है, इसका कब्जा भी जैद यानी मालिक के कब्जे की तरह ही है। किसकी तरह है? तो जब यह मालिक ही का कब्जा है तो गोया चीज मालिक ही के पास है अभी तक। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं लिअन न यदहु यदुल मालिकी, इसलिए क्योंकि आदिल आदमी का जो कब्जा है वो मालिक ही का कब्जा है। वलिहाजा यरजिउ अलैही इंद अलिस्तिहकाक, और इसी वजह से आदिल जो है वो रुजू करता है मालिक पर ही इस्तिहकाक के वक्त। इस्तिहकाक किसी चीज का कोई और मुस्तहिक निकल आए, किसी चीज का कोई शख्स मुस्तहिक निकल आए। मसलन जैद ने अपनी गाड़ी बतौरे रहन के बकर के पास रखवा दी, बकर आदिल आदमी है, तीसरा शख्स है, और फिर मसलन वो बेच देता है आदिल आदमी। आगे तफसील से कई मसले आ जाएंगे। वो आदिल आदमी ने उसको, दोनों ने वकील भी बनाया था कि अगर फला तारीख आ गई और इसने मेरा देन अदा न किया तो इस ये वकील भी बनाओ इसको, ये फिर गाड़ी को बेचकर मेरा देन अदा कर देगा, ये अमर ने कहा था। तो दोनों ने इतफाक कर लिया, चुनाचे जैद ने उसको वकील, आदिल ही को वकील भी बना दिया कि मैं तुम्हारे पास अपनी गाड़ी तो रखवा रहा हूं, और अगर इस महीने की फलां तारीख तक मैंने इसका देन अदा न किया तो आप इस गाड़ी को बेच देना और इसका देन अमर को, इसके समन जो है वो जो मेरे ऊपर देन है उसके बदले में किसको अदा कर देना? अमर को अदा कर देना। सूरत समझ में आ रही है? तो चुनांचे उस वो तारीख आ गई और आदिल आदमी ने वो गाड़ी फरोख्त कर दी। फरोख्त करने के बाद उस गाड़ी का कोई मुस्तहिक निकल आया, खालिद ने वो गाड़ी मुश्तरी के पास देख ली। आदिल ने फरोख्त की थी, किसने? आदिल, जिसके बाद रहन रखवाया गया था वही वकील था, उसने फरोख्त कर दी। किसने खरीदी? मसलन जो मुश्तरी था, उस मुश्तरी के पास खालिद ने किसी दिन गाड़ी देखी तो खालिद उसके पास आ गया कि भाई ये गाड़ी तो मेरी है। उसने कहा भाई मैंने तो फला आदमी से खरीदी है। उसने कहा मैं नहीं जानता। काजी के पास गया, दो गवाह पेश कर दिए कि ये गाड़ी मेरी है। काजी ने उसके हक में फैसला किया और खालिद मुश्तरी से वो गाड़ी ले गया। सूरत समझ में आ गई? अब मुश्तरी ने तो समन देकर क्या किया था, समन दिए थे गाड़ी के बदले। किसको दिए थे? आदिल को। और आदिल ने फिर किसको दिए थे? मुर्तहीन को। तो लिहाजा वो फिर रुजू करेगा किस पर? आदिल पर, जिसको उसने पैसे दिए थे गाड़ी के। मुश्तरी ने किससे खरीदी थी? आदिल से। तो मुश्तरी आदिल के पास चला गया कि भाई वो गाड़ी तो किसी और की थी, आपने कैसे मुझे फरोख्त कर दी, लाओ मेरे समन निकालो। और चुनांचे उससे उसने समन वसूल कर लिए, समन वसूल। अब ये देखो वो जो रहन था उसका मुस्तहिक कोई और निकल आया, और अब ये जो आदिल है ये किस पर रुजू करेगा? मालिक, जो जिसने यानी जैद जिसने गाड़ी रखवाई थी, जिसने गाड़ी रखवाई थी। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखा जब भी उस रहन का कोई मुस्तहिक निकल आए तो आदिल किस पर रुजू करता है? मालिक यानी राहिन पर रुजू करता है। मालूम हुआ आदिल का कब्जा किसके कब्जे की तरह है? मालिक के कब्जे की तरह। जब मालिक का कब्जा है तो मुर्तहीन के तो कब्जे में चीज आई नहीं। बात समझ में आ गए? तो लिहाजा ये जायज नहीं। तो कहते हैं वकाल मालिक रहमहुल्लाह ताला ला यजूज़ु, इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये जायज नहीं है। लिअन्न यदहु यदुल मालिकी, क्योंकि आदिल का कब्जा जो है वो मालिक ही का कब्जा है। वलिहाजा यरजिउ अलैही इंद अलिस्तिहकाकी, और इसीलिए आदिल जो है वो रुजू करता है मालिक पर। इंदल इस्तेहकाकी, जब उस रहन का कोई मुस्तहिक निकल आए। फन आदमल कब्जू, तो मुर्तहिन का कब्जा तो क्या हुआ? मादूम है, उसका तो कब्जा है ही नहीं, ये तो वही मालिक ही का कब्जा था। कुलना, हम जब जवाब में कहते हैं यदुहु अलस सूरति यदुल मालिकी वफिल मालियति यदुल मुर्तहिनी, हम कहते हैं वो जो रहन रखवाया उसकी दो हैसियतें हैं, एक उसकी सूरत है, उसकी शक्ल है, उसकी बनावट है, और एक उसके यानी ये क्यों कहें एक उसकी जात है और एक उसकी मालियत है। क्या है? माल, कि वो माल भी है। गाड़ी के किसी के पास रखवाई, गाड़ी किसी के पास रखवाई, अब देखो एक उस गाड़ी की सूरत है और एक उस गाड़ी की मालियत, यानी उसके मालियत के वो माल है 10 लाख रुपए की है भाई, बात समझ में आ रही है। तो हम कहते हैं कि जो आदिल आदमी ने गाड़ी पर कब्जा किया तो जो गाड़ी की सूरत पर कब्जा है वो मालिक की तरफ से कब्जा है। किसकी तरफ से? मालिक की तरफ से, यानी गोया मालिक ही का कब्जा है सूरत के अंदर, यानी ये बतौर हिफाजत के है, बतौर अमानत के है, बात समझ में आ रही है। और ये रही गाड़ी की मालियत के, गाड़ी माल भी है, उसकी कीमत 10 लाख रुपए भी है, तो मालियत के एतबार से इसका कब्जा मुर्तहिन का कब्जा है। किसका? तो गोया ये जो हम कहते हैं ये जो आदिल आदमी है दो आदमियों के कायम मकाम है, ये राहिन का भी कायम मकाम और मुर्तहिन का भी, तो दोनों के कायम मकाम है, दोनों की तरफ से कब्जा है, मालिक की तरफ से कब्जा है उस चीज की सूरत पर, यह हिफाजत और अमानत वाला कब्जा है, उस चीज की हिफाजत करेगा और उसके पास महफूज, अपने पास महफूज रखेगा, बात समझ में आ रही है। और मुर्तहिन की तरफ से भी कब्जा है, मुर्तहिन की तरफ से कब्जा है किस एतबार से? मालियत पर कब्जा है, मालियत के एतबार से कि ये माल है, ये गाड़ी क्या है? माल है, 10 लाख रुपए इसकी कीमत है। और मुर्तहिन की तरफ से जो कब्जा है वो कौन सा कब्जा है? जमान वाला है। क्या है? जमान वाला कब्जा है, उसमें जमान आएगा अगर उसके पास चीज हलाक हो गई। मुर्तहिन पर क्या आएगा? यानी ये मुर्तहिन की तरफ से कब्जा है ना, और मुर्तहिन की तरफ से कब्जा कौन सा है? जमान वाला। कौन सा? यानी अगर ये गाड़ी इसके पास हलाक हो जाती है तो मालिक पे जमान आएगा या मुर्तहिन पे जमान आएगा? मुर्तहिन पे जमान आता है ना, तो मालिक पर तो जमान नहीं, तो मालिक की तरफ से कब्जा तो है लेकिन वो कब्जा हिफाजत और अमानत वाला है, और मुर्तहिन की तरफ से कब्जा कौन सा है? मालियत और जमान वाला है। और जमान क्या आता है? वो उस चीज की मालियत ही तो आती है, उस चीज की मालियत वाला ही तो जमान आता है। तो मालूम हुआ ये कितने अफराद के दर्जे में हो गया? दो अफराद के दर्जे में। तो दोनों की तरफ से ये कब्जा है, सिर्फ मालिक की तरफ से कब्जा नहीं, लिहाजा हमारे नजदीक जायज है आदिल के पास रहन रखवाना। बात अच्छी तरह समझ में आ गई? कुल ना, हम कहते हैं यदुहु अलस सूरति यदुल मालिकी, के आदिल का कब्जा जो है उस रहन की सूरत पर वो मालिक का कब्जा है। वफिल मालियति यदुल मुर्तहिनी, और उस रहन की मालियत में यानी उसके माल होने के एतबार से जो उस पर कब्जा है यदुल मुर्तहिनी, वो किसका कब्जा है? मुर्तहिन का कब्जा है। लिअन्न यदहु यदु जमानिन, लिअन्न यदहु, यदहु हाजमीर आदिल को लौटाएं, लिअन्न यदहु यदु जमानिन, इसलिए क्योंकि आदिल का जो कब्जा है वो कौन सा कब्जा है? जमान वाला। मालूम हुआ ये किसकी तरफ से है? मुर्तहिन की तरफ से कब्जा है, क्योंकि जमान तो किस पर आता है? मुर्तहिन पर आता है। ये माना ली अन्न यदहु यदु जमानिन, इसलिए क्योंकि आदिल आदमी का रहन पर जो कब्जा है यदु जमानिन, वो जमान वाला कब्जा है। वल मजमून उल मालियतु, और मजमून जो है वो उस चीज की मालियत है भाई, उसकी सूरत मजमून नहीं। अगर देखो वो चीज उसके पास हलाक हो जाती है तो मुर्तहिन पर क्या लाजिम होता है? उतनी मालियत का जमान आता है या उस जैसी सूरत वाली गाड़ी का जमान आएगा? मालियत वाला। तो वो वल मजमून उल मालियतु, और मजमून जो होती है मालियत होती है, यानी उस चीज के माल होने की जो हैसियत है। फन्ना जला मंजिला शख्सैनी, तो ये हो गया दो शख्सों के दर्जे में, या आदिल कितने अफराद के दर्जे में हो गया? दो अफराद के दर्जे में हो गया, दो अफराद का ये नाइब हो गया, राहिन का भी नाइब और मुर्तहिन का भी नाइब। नाइब की तरफ से कब्जा है उस चीज की सूरत पर, और ये कब्जा कौन सा है? अमानत और हिफाजत वाला, कि उसकी कि उस चीज की हिफाजत करेगा, उसको महफूज रखेगा, और मुर्तहीन की तरफ से भी नाइब है और उस चीज पर उसका कब्जा है, और वो कब्जा कौन सा है, मालियत वाला है, और उसमें जमान आता है। भाई बात समझ में आ गई। लिहाजा हमारे नजदीक आदिल के पास रहन रखवाना जायज है। वला अखज़ा अहदिहिमा मिन्हू, और नहीं है लेना इन दोनों में से किसी एक के लिए यानी राहिन और मुर्तहिन के लिए, मिन्हू आदिल से। कहना यह चाहते हैं कि राहिन और मुर्तहिन ने आपस में इत्तेफाक करके वो रहन किसके पास रखवा दिया, आदिल आदमी के पास। अब याद रखो इस रहन के साथ दोनों का हक वाबस्ता है। किसके साथ? रहन के साथ। राहिन का भी हक वाबस्ता और मुर्तहिन का हक भी वाबस्ता। राहिन का क्या हक? कि वो उस चीज का मालिक है। और मुर्तहिन का क्या हक है? भाई देखो ना, जैद ने अपनी गाड़ी आदिल आदमी के पास रखवा दी बतौर रहन के। अब इस गाड़ी के साथ जैद यानी राहिन का हक भी वाबस्ता है और मुर्तहिन यानी अमर का हक भी वाबस्ता। राहिन यानी जैद का क्या हक है? कि वो इस गाड़ी का मालिक है। और मुर्तहिन का क्या हक वाबस्ता है? कि उसने इसके जरिए अपने दैन को वसूल करना है। लिहाजा जब दोनों का हक वाबस्ता है तो अब वो आदिल आदमी उससे दोनों में से कोई एक अकेला जाकर उसे ले नहीं सकता। अकेला जैद चला जाए और जाकर कहे कि यह रहन मेरे हवाले कर दो, नहीं भाई, आदिल के लिए जायज नहीं है कि उसको रहन दे दे, क्योंकि इसके साथ मुर्तहिन का भी हक वाबस्ता है। और मुर्तहिन अकेला जाए और जाकर कहे कि यह रहन अब मुझे दे दो, नहीं भाई, आदिल के लिए जायज नहीं है मुर्तहिन को यह रहन दे दे, क्योंकि इसके साथ मालिक का भी हक वाबस्ता है। यह माना है वला अखज़ा लिअहदिहिमा मिन्हू, और नहीं है लेना उन दोनों में से किसी एक के लिए भी, मिन्हू आदिल से। उन दोनों में से किसी एक यानी राहिन और मुर्तहिन में से किसी एक के लिए भी जायज नहीं है कि वो उसको ले ले, मिन्हू अय मिनल अदल आदिल से। वज़मीना बिदफ़ईही इला अहदिहिमा, और वो आदिल आदमी जामिन होगा बिदफ़ईही इला अहदिहिमा किसी एक के हवाले करने से। उस आदिल ने क्या किया? जैद आया था मालिक, उसने उसको दे दिया तो उस पर जमान आएगा भाई। या उसने मुर्तहिन को दे दिया, अकेला मुर्तहिन आया था तो उस पर जमान आएगा भाई, उससे उस चीज की कीमत वसूल करके बतौर रहन के रखी जाएगी। बात समझ में आ गई? कहते हैं वज़मीना बिदफ़ईही इला अहदिहिमा, और वो आदिल आदमी जामिन होगा बिदफ़ईही उस रहन को हवाले करने से, इला अहदिहिमा किसी एक के भी यानी राहिन और मुर्तहिन के। वहुल्कुहु माअहु हुल्कुर रहनिन, और उस रहन का हलाक हो जाना माअहु ऐ माअल अदलि उस आदिल आदमी के पास, हुल्कुर रहनिन ये रहन का हलाक होना है। भाई जैसे मुर्तहिन के पास रहन रखवाते थे और वो रहन हलाक होता था तो उस पर जमान आता था क्योंकि वो रहन हलाक हुआ, तो यहां आदिल आदमी के पास भी जब वो रहन हलाक होगा तो ये रहन हलाक हुआ है और फिर क्या आएगा? जमान आएगा, और किस पर आएगा? मुर्तहिन पर आएगा भाई, मुर्तहिन पर। तो ये माना है वहुल्कुहु माअहु हुल्कुर रहनिन, और हलाक होना उस चीज का आदिल आदमी के पास, ये रहन का हलाक होना है। फ़इन वक्कल अल अदल औ गैरहु बिबैइहि इज़ा हल्ला अजलुहु सहा। सूरत यह कि दोनों ने उस आदिल आदमी के पास रहन रखवाया और साथ ही उसे मालिक ने वकील भी बना दिया कि अगर फला तारीख तक मैं देन अदा न करूं अमर को तो तुम वकील हो, तुम इस गाड़ी को बेचना और वो समन के जरिए अमर का देन अदा कर देना। तो कहते हैं ये भी सही है, उसी आदिल को या किसी और आदमी को भी वकील बनाना सही है। बात समझ में आ गई? ये माना है फइन वक्कल अल अदला, अगर वकील बना दिया राहिन ने आदिल आदमी को, औ गैरहु या उसके अलावा किसी और तीसरे चौथे आदमी को वकील बना दिया, बिबैइही उस रहन के बेचने का, इदा हल्ला अजलुहु जब उसका जब उसकी मुद्दत आ जाए, उस देन की मुद्दत आ जाए, सहा तो ये भी सही है। फइन शाराता ऐ तौकील फिर रहनी। अब याद रखो एक है वकील बनाना रहन को बेचने के लिए आकद के अंदर ही, जब आकदे रहन किया तो उसी के अंदर वकील बना दिया। मसलन जैद अमर के पास गया कि मुझे 10 लाख रुपए देन चाहिए, उसने कहा अपनी गाड़ी बतौर रहन के रखवाओ तो फिर मैं तुम्हें देन दूंगा, और फिर उसी आकद के अंदर यह भी शर्त तय कर ली कि ये जो आदिल है जिसके पास गाड़ी रखवाएंगे ये गाड़ी को फला तारीख तक अगर तुमने मेरा देन अदा न किया तो ये वकील बनाओ इसको, ये गाड़ी को बेचकर मेरे देन को अदा करे, या फला आदमी किसी और चौथे आदमी को वकील बना दो बेचने का। अब देखो ये वकील किस में बनाया, अकदे रहन के अंदर बनाया, किस में, अकदे रहन के अंदर बनाया। तो याद रखिए ये जो वकील है इसको अब राहिन भी माजूल नहीं कर सकता क्योंकि ये आकद के अंदर ही इसकी शर्त लगाई गई थी। बात समझ में आ गई। लिहाजा अब जैद जिसकी गाड़ी है वो बाद में कहता है कि वो कोई वकील नहीं, वो इस गाड़ी को नहीं बेच सकता। नहीं भाई, अब आप उसको माजूल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी शर्त किसके अंदर लगाई गई थी, अकदे रहन में। राहिन उसको जिंदगी में भी वकालत से माजूल नहीं कर सकता, और राहिन मर जाए तो भी वकील माजूल नहीं, वो क्या करेगा, उस गाड़ी को बेचेगा और मुर्तहिन के देन को अदा करेगा। फइन शुरिता अय तौकीलु फिर रहनी, अगर शर्त लगा दी गई वकील बनाने की रहन के अंदर, ला या नाजिलु बिल आजली, तो वकील माजूल नहीं होता माजूल कर देने से। वला बिमौत राहिनी अविल मुर्तहिनी, और ना ही राहिन या मुर्तहिन की मौत से, यानी उससे भी वो माजूल नहीं होता। बल बिमौत इल वकीली, बल्कि वकील की मौत से, वकील खुद मर जाए तो फिर माजूल होगा, वैसे माजूल नहीं होगा। सवा उनका नल वकील उल मुर्तहीनु अल अविल आदलु औ गैरहुमा, कहते हैं बराबर है कि वो वकील मुर्तहीन खुद हो या आदिल हो, औ गैरहुमा या इन दोनों के अलावा। वकील भाई, राहिन ने वकील बनाना है रहन को बेचने के लिए, चाहे वो मुर्तहीन ही को जिससे देन लिया है उसी को वकील बना दे, चाहे आदिल आदमी को वकील बना दे, चाहे किसी तीसरे आदमी को वकील बना दे, सब जायज हैं। ये माना है सवा उनका नल वकील उल मुर्तही ना पढ़े भाई, सवा उनका नल वकील उल मुर्तही ना अविल आदल औ गैरा हो, मां बराबर है कि वो वकील मुर्तहीन हो या आदिल हो या इन दोनों के अलावा हो। व इदा मातल वकील उला यकूमु वारिसुहु औ वसीयुहु मकामहु इंदना, भाई वकील मर जाए तो उसका वारिस या उसका वसी उसका कायम मकाम और उसका नायब नहीं बनेगा, उसका कायम मकाम नहीं बनेगा। वसी, वसी वो शख्स जिसको कोई शख्स वसीयत, मरने वाला क्या कर जाता है, वसीयत कर जाता है, अपने कामों का निगरान बना जाता है, उसको क्या कहते हैं, वसी। तो वकील ने भी मरने से पहले अपने कामों का निगरान और अपनी वसीयत किसको की थी, मसलन एक आदमी को कर दी, उसको वसी बना दिया, अपने कामों का निगरान बना दिया। तो वकील के मरने के बाद वकालत खत्म हो गई, उसका वारिस भी उसका कायम मकाम होकर अब उस गाड़ी को नहीं बेच सकता और उसका वसी भी उस गाड़ी को नहीं बेच सकता। ये माना है वइदा मातल वकील ला यकूम वारिसुहु औ वसीयुहु मकामहु इंदना, जब वकील मर जाए तो उसका वारिस या उसका वसी उसका कायम मकाम नहीं होता हमारे नजदीक। वइंदा अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह तआला, और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक, अन वसीयल वकील यमलिकु बैअहु, के वकील का जो वसी है वो इस रहन को बेचने का मालिक है, यानी वो भी वकील की तरह उसको भी हक हासिल है कि वो इसको चीज को बेचे और मुर्तहिन के देन को अदा करे। व लहू बैअहु बिगैबति वरासतिही, भाई राहिन मर गया, मसलन राहिन मर गया, वकील जिंदा है, तो अब क्या वकील को के लिए जायज है कि वारिसों की गैर मौजूदगी में ही वो गाड़ी को बेच दे और देन को अदा कर दे? कहते हैं भाई वकील के लिए तो जायज था, राहिन की गैर मौजूदगी में भी गाड़ी को बेच सकता था जब वो तारीख आ गई, जब वो उस वक्त तो मालिक की मौजूदगी भी नहीं थी जरूरी, तो चाहे जाए कि उसके वारिसों की, लिहाजा अब उसके वारिस भी, राहिन मर गया उसके वारिस हाजिर नहीं है, तो भी वकील उस चीज को बेच सकता है, वारिसों की मौजूदगी जरूरी नहीं। व लहू बैउहू बिगैबति वरासतिही, भाई वल्लहू यह हाजमीर किसको राजे, बैउहू यह हाजमीर किसको राजे, बिगैबती वरासती ही ये हाजमीर किसको राजे, आगे शरा में बतला रहे वल्लहू ऐ लिल वकीली, लहू की जमीर किसको राजे वकील, और वकील के लिए जायज है बैउहू ऐ बैउल मरहूनी, बतला दिए कि ये हाजमीर मरहून को राजे, वलहू बैउहू बिगैबती वरासती ही, और वकील के लिए जायज है कि वो रहन को बेच सकता है बिगैबती वरासती ही राहिन के वारिसों की गैर मौजूदगी में, अलिल वकीली बैउल मरहूनी बिगैबती वरासती राहिनी, और वकील यानी वकील के लिए जायज है कि वो मरहून को बेच दे राहिन के वारिसों की गैर मौजूदगी में ही, वला यबीउ राहिनु अविल मुर्तहिनु इल्ला बिरिज़ल आखरी, भाई रहन रखवा दिया चाहे मुर्तहिन के पास रहन रखवाया चाहे आदिल आदमी के पास रहन रखवाया, क्या अब राहिन या मुर्तहिन इसको बेच सकता है? कहते हैं नहीं भाई, न राहिन के लिए अब इसको बेचना जायज और ना मुर्तहिन के लिए बेचना जायज है। राहिन इसलिए नहीं बेच सकता क्योंकि इस रहन के साथ मुर्तहिन का हक वाबस्ता है। ये चीज हमने किस लिए रखवाई है? उसके पास बतौरे रहन के, ताकि मुर्तहिन अपना हक इससे वसूल करे। लिहाजा राहिन ये गाड़ी किसी को बेचते फिर तो ये गाड़ी हाथ से निकल जाएगी भाई, तो रहन तो खत्म हो जाएगा, लिहाजा राहिन को ये गाड़ी बेचने की इजाजत नहीं। इसी तरह मुर्तहिन के लिए भी जायज नहीं है कि इस चीज को क्या कर दे, बेच दे। बात समझ में आ गई? तो मुर्तहिन खुद ही उठे और इस चीज को बेचे और बेचकर इसके जरिए अपने पैसे वसूल करना चाहता है, देन वसूल करना चाहता है? नहीं भाई नहीं, चीज उसके पास रहन है, बेशक मुद्दत पूरी हो गई, मुद्दत पूरी हो गई, अब वो चाहता है कि मेरे पैसे मुझे मिल जाएं, अभी तक मकरूज ने उसको पैसे नहीं दिए, तो अब ये गाड़ी को खुद नहीं बेच सकता जब तक राहिन इजाजत नहीं देगा, और अगर जरूरी है बेचना, मुद्दत आ चुकी है, तो फिर काजी के पास जाएगा और काजी को कहेगा कि वक्त मुकर्रर पूरा हो गया, ये मेरा देन अदा नहीं कर रहा, काजी उसको फिर मजबूर करेगा बेचने पर। बात समझ में आ गई? ये खुद नहीं बेच सकता। वला यबीउ राहिनु अविल मुर्तहिनु, और ना तो राहिन बेच सकता है रहन को और ना मुर्तहिन, इल्ला बिरिज़ल आखरी, मगर दूसरे की रजामंदी से। हां मुर्तहिन ने इजाजत दे दी कि हां ये रहन आप बेच दें, तो फिर इजाजत दे दी, रजामंदी हो गई, तो फिर राहिन बेच सकता है। अगर राहिन ने उसे पहले बेच भी दिया तो मुर्तहिन की इजाजत पर मौकूफ है, अगर मुर्तहिन इजाजत देगा तो वो बे नाफिज होगी वरना नाफिज नहीं होगी, और मुर्तहिन भी इसी तरह अगर राहिन से इजाजत ले लेता है तो फिर उसके लिए भी बेचना जायज है। ये माना है इल्ला बिरिज़ल आखरी, मगर दूसरे की रजामंदी से, अला यकूनु लिर्राहिनी बैउर रहनी इल्ला बिरिज़ल मुर्तहिनी, यानी जायज नहीं है राहिन के लिए रहन को बेचना मगर मुर्तहिन की इजाजत से, व ऐज़न ला यकूनु लिल मुर्तहिनी बैउर रहनी इल्ला बिरिज़ा राहिनी, और इसी तरह जायज नहीं है मुर्तहिन के लिए रहन को बेचना मगर राहिन की इजाजत से, राहिन की इजाजत से बेच सकता है। किस तरह बेच सकता है? ये बात तस्वीरिया है, सूरत बतला रहे हैं, बी अं वक्कलहू बाई सूरत के राहिन इस मुर्तहिन को वकील बना दे, तो फिर मुर्तहिन क्या कर सकता है? इसको बेच सकता। औ बाअहू या मुर्तहिन ने खुद ही बेच दिया, फअजाज़र राहिनु बैअहू, तो राहिन ने इजाजत दे दी उसकी बैअ की, बाद में इजाजत दे दी कि ठीक है चलो बेच दिया है तो ठीक है, तो वो बैअ क्या हो जाएगी? नाफिज हो जाएगी। فَإِنْ حَلَّ أَجَلُهُ وَرَاهِنُهُ غَائِبٌ أُجْبِرَ الْوَكِيلُ عَلَى بَيْعِهِ كَالْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ غَابَ مُؤَكِّلُهُ وَأَبَاهَا۔ صورت مسئلہ یہ کہ رہن کسی کے پاس رکھوایا گیا تھا چاہے مرتہن کے پاس چاہے عادل آدمی کے پاس، اور پھر وہ وقت آ گیا بھئی جس دن دین کی ادائیگی ہونی تھی، وہ وقت آیا لیکن راہن غائب ہے، راہن غائب، اور راہن نے ایک شخص کو وکیل بنایا تھا کہ اگر فلاں تاریخ تک میں دین ادا نہ کروں تو اس گاڑی کو بیچنا اور میرا دین ادا کر دینا۔ اب کیا کریں بھئی، راہن غائب ہے، مرتہن کو پیسوں کی ضرورت ہے، وکیل موجود ہے اور وہ بھی نہیں بیچ رہا، वकील भी वो कह रहा है इंतजार देखो भाई कुछ देर इंतजार कर लो शायद आ जाए शायद आ जाए। कहते हैं तो क्या हम वकील को मजबूर कर सकते हैं? कहते हैं हां भाई काजी क्या करेगा वकील को मजबूर करेगा कि वक्त आ गया मुद्दत पूरी हो गई उसने तुम्हें बेचने का कहा था अब इस चीज को बेचो भाई। और मजबूर करेगा कैसे? कहते हैं अगर वकील नहीं बेच रहा तो काजी उसको जेल में डाल देगा चंद दिन के लिए, तीन दिन या इससे ज्यादा के लिए जेल में डाल दे। अगर वो फिर भी नहीं बेचता तो फिर काजी खुद किसी को निगरान मुकरर करे और उस गाड़ी को फरोख्त करवा दे और फिर मुर्तहिन का देन अदा कर दे। सूरत समझ में आ गई। फइन हल्ला अजलुहू अगर उस देन की मुद्दत जो है वो आ गई, व राहिनुहू गाइबुन इस हाल में कि राहिन जो था उसका वो गाइब था, उजबिरल वकील अला बैईही तो मजबूर किया जाएगा वकील को उसके बेचने पर उस रहन के बेचने पर, कल वकील बिल खुसूमती जैसे वकील बिल खुसूमत जो है गाब मुअक्किलुहू इस हाल में कि इसका मुअक्किल गायब हो, व अबाहा और वो वकील जो है इनकार कर रहा है, हा जमीर खुसूमत को राजे है अबाहा वो खुसूमत का इनकार कर रहा है। सूरत ये एक आदमी ने दूसरे आदमी पर दावा कर दिया और उस दावे के लिए अब उसको अदालत ले जाना चाहता है कि मेरे पास काजी के पास चलो भाई दावा कर दिया। जो मुद्दा आलय था उसने एक और आदमी को अपना वकील बनाया कि ये आदमी मेरी तरफ से नाइब है मेरा वकील है ये तुम्हें जवाब देगा इसके साथ मुकदमा लड़ो। बात समझ में आ गई। चुनांचे वो वकील बिल खुसूमत बन गया। खुसूमत कहते हैं मुकदमे को झगड़े को भाई। तो वो जो मुद्दा आलय था उसने क्या किया एक आदमी को अपना वकील बिल खुसूमत बना दिया कि ये तुम्हारे साथ मुकदमा लड़ेगा काजी के पास जाकर ये तुम्हें जवाब देगा ये तुम्हारे साथ बहस मुबहसा करेगा गवाह वगैरह लाएगा या जो भी बात करनी है। मुद्दा आलय अब गायब हो गया कहीं चला गया कहीं चला गया। अब वकील बिल खुसूमत है मुद्दाई के उसको काजी के पास ले जाना चाहता है और वो इनकार कर रहा है क्या कर रहा है कि नहीं भाई वो मुद्दाई वो मुद्दालय जो है वो खुद आ जाएगा उसी से बात कर लेना। तो क्या अब इस वकील बिल खुसूमत को मजबूर किया जा सकता है कि वो खुसूमत करे काजी के पास आए और मुकदमा चलाए उसके साथ मिलकर? कहते हैं हां भाई इस वकील बिल खुसूमत को मजबूर किया जाएगा। काजी क्या करेगा इसको मजबूर करेगा कि जब उसने तुम्हें वकील बिल खुसूमत बनाया था तो तुम्हें उसी वक्त इनकार करना चाहिए था जब तुम बन गए। अब वो तुम्हारे ऊपर एतमाद करके कहीं चला गया कि ये अब मेरा मुकदमा लड़ेगा ये चला गया और अब तुम इनकार कर रहे हो और तुम्हारे इनकार की वजह से ये जो मुद्दई है इस बेचारे का हक जाया होगा भाई। लिहाजा काजी उस वकील बिल खुसूमत को क्या करेगा मजबूर करेगा कि वो क्या करे खुसूमत करे आकर मुकदमे का सामना करे। ये माना है कल वकील बिल खुसूमती जैसे कि वकील बिल खुसूमत गाब मुअक्किलुहू इस हाल में कि उसका मुअक्किल क्या हो गायब हो चुका है, व अबाहा और वो वकील जो है इनकार कर रहा है। हा जमीर किसको राजे खुसूमत मुअक्किल गायब है और वकील बिल खुसूमत इनकार कर रहा है खुसूमत से तो जैसे इसको मजबूर किया जाएगा इसी तरह वो राहिन के वकील को भी मजबूर किया जाएगा। फ़इन्नल वकील युजबरु अलल खुसूमती क्योंकि वकील जो है वकील बिल खुसूमत उसको मजबूर किया जाएगा खुसूमत पर। फल हासिलु हासिल कलाम ये कि अन्नल वकील ला युजबरु अलल तसर्रुफी के वकील को मजबूर नहीं किया जाता तसर्रुफ पर। वकील को तसर्रुफ जो तसर्रुफ करना है यानी जिस चीज के लिए वकील बनाया गया है उस वकील को उस तसर्रुफ पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इल्ला अन्न फी हादिही सूरती मगर इस सूरत में इदा गाबर राहिनु जब गायब हो राहिन व अबल वकील अनिल बैई और इनकार कर रहा है वकील बै से फइन्नल मुर्तहिन यतज़र्ररु क्योंकि मुर्तहिन जो है उसको नुकसान होता है उसका देन उसको पैसों की जरूरत है उसका नुकसान हो रहा है। फयुजबरुल वकील अलल बैई तो मजबूर किया जाएगा वकील को बै पर। तो वकील ने इनकार किया है तो अब मुर्तहिन का नुकसान हो रहा है तो उसको मजबूर किया जाएगा। कमा युजबरु अलल खुसूमति इदा गाबल मुवक्किलु, जैसे कि मजबूर किया जाएगा वकील को खुसूमत पर जब मुवक्किल गायब हो। फइन्नल मुवक्किल अतमद अलैही, इसलिए क्योंकि मुवक्किल यानी जिसने उसको वकील बनाया था, इअतमद अलैही, भाई देखो एक शख्स ने दूसरे को वकील बिल खुसूमत बनाया और खुद कहीं चला गया, उसने तो अपनी तरफ से इंतजाम कर दिया, वो तो मुतमईन हो गया कि अब मैं सफर पर जाना है तो मेरे पीछे ये मेरा मुकदमा संभाल लेगा, तो उसने तो किस पर एतमाद किया था, वकील बिल खुसूमत पर, और खुद चला गया सफर पर। अब वकील बिल खुसूमत भी मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार नहीं, तो इस सूरत में उसको मजबूर करेंगे क्योंकि मुद्दाई का हक जाया होता है, उसका नुकसान है। फइन्नल मुवक्किल अतमद अलैही, इसलिए क्योंकि मुवक्किल जिसने उसको वकील बनाया था यानी वकील बिल खुसूमत जिसने उसको बनाया था, इअतमद अलैही, उसने तो इस वकील पर एतमाद किया, वगाब और खुद गायब हो गया यानी सफर वगैरह पर चला गया। फलौ लम युखासिम, अगर ये वकील भी मुखासमत न करे भाई, मुकदमे का सामना न करे, यतज़र्ररुल मुवक्किलु, तो जो मुवक्किल है उसका नुकसान होगा जिसने इसको वकील बनाया था। वयज़ीउ हक़ुहु, और उसका हक जाया हो जाएगा। फयुजबरुल वकीलु अलल खुसूमति, तो लिहाजा वकील को मजबूर किया जाएगा खुसूमत पर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो मुवक्किल का भी हक जाया होगा, उसका नुकसान हुआ, और नीज वो जो मुद्दाई है उसका भी नुकसान है, क्योंकि गायब के खिलाफ तो काजी फैसला नहीं कर सकता भाई, या तो आदमी मुकदमे में खुद मौजूद हो या उसका वकील मौजूद हो, फिर ही काजी फैसला करता है। बात समझ में आ गई, गायब के खिलाफ काजी फैसला नहीं कर सकता, यह जाब्ता हमेशा याद रखना। वकदा युजबरु लौ शुरिता बादर रहनी फिल असाही, और इसी तरह मजबूर किया जाएगा वकील को, लौ शुरिता बादर रहनी, अगर वकालत की शर्त रहन रखवा अकदे रहन के बाद लगवाई गई, फिल असाही ज्यादा सही कौल के मुताबिक। भाई ये तो वो उस वकील की बात हो रही थी जिसको मजबूर किया जाएगा कि जिसकी शर्त अकदे रहन में ही लगाई गई थी, रहन रखवाते वक्त ही उसको वकील बनाया गया था। बात समझ में आ रही है। और अगर किसी वकील को बाद में मुकरर किया गया, आकदे रहन हो गया और रहन रखवाए हुए कई दिन भी मसन गुजर गए हैं, अब बाद में राहिन को मुर्तहिन कहता है तो राहिन ने एक आदमी को वकील बना दिया कि मुकरर तारीख तक अगर मैंने पैसे अदा ना किए तो तुम इस गाड़ी को बेचकर इसके समन से मेरे दैन की अदायगी कर देना, तो ये तो बाद में वकील बनाया गया है, अकदे रहन में तो इसकी शर्त नहीं थी, क्या इस वकील को भी मजबूर किया जाएगा? तो इस बारे में दो कौल हैं, एक कौल ये है कि मजबूर नहीं किया जाएगा, और दूसरा ज्यादा सही कौल ये है कि इस वकील को भी मजबूर किया जाएगा, इसलिए क्योंकि अगर ये वकील उस चीज को नहीं बेचेगा तो मुर्तहिन का नुकसान हो रहा है, उसे पैसों की जरूरत है और अदायगी नहीं हो रही। बात समझ में आ गई। वकदा युजबरु लौ शुरिता बादर रहनी फिल असाही, और इसी तरह वकील को मजबूर किया जाएगा अगर वकालत की शर्त लगाई गई, तौकील की शर्त लगाई गई, बादर रहनी अकदे रहन के बाद, फिल असाही ज्यादा सही कौल में, इअलम अन्ना फिल जबर कौलैनी, जान ले तू के जबर में यानी मजबूर करने के बारे में कौलैनी दो कौल हैं, इस वकील जो बाद में मुकरर किया गया ना इसके बारे में दो कौल हैं कि मजबूर करेंगे या नहीं। अहदुहुमा, एक तो ये है कि अन्नल जबर इन्नमा यस्बुतु इज़ा कानतिल वकालतु लाजिमतन, के जबर उसी वक्त साबित होगा जब वकालत लाजिम हो, जब वकालत लाजिम हो, और वकालत लाजिम कब होती थी? जब अकदे रहन में वकालत की शर्त लगाई, और आपने पढ़ा उसको न राहिन माजूल कर सकता है और ना मुर्तहिन, और न राहिन के मरने से वो माजूल होता है और न मुर्तहिन के मरने से वो माजूल होता है, वो है वकालत लाजिमा जिसकी अकदे रहन ही में शर्त लगाई गई थी। तो कहते हैं कि अन्नल जबरा इन नमा यसबुतु इजा कानतिल वकालतु लाजिमतन, के जबर जो है उसी वक्त साबित होगा जब वकालत लाजिम हो, वही और वो ये वकालत लाजिम है ये है कि अंतकून फी जिम्न अक्द रहनी कि वो वकालत अक्द रहन के जिमन में हो उसी के अंदर हो। फइन काना बादहु ला युजबरु अगर तौकील जो थी या वकालत उसके बाद हुई तो फिर मजबूर नहीं किया जा सकता वकील को। वल आख और दूसरा कौल जो है जो ज्यादा सही है वो ये है कि अनल जबरा बिना अन आला अन हक्कल मुर्तहिनी यज़ीउ कि जबर जो है मजबूर करना इस बिना पर है कि मुर्तहिन का हक जाया हो रहा है। फयुजबरु तो लिहाजा मजबूर किया जाएगा। कल वकील बिल खुसूमती इदा गाबल मुवक्किलु जैसे वकील बिल खुसूमत जो है उसको मजबूर किया जाता है इदा गाबल मुवक्किलु जब उसका मुवक्किल गायब हो। वइन्नमा काना हादल कौलु असह और ये वाला जो कौल है ज्यादा सही है। لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول इसलिए क्योंकि عدم دليل دلالت نہیں کرتی عدم مدلول پر خصوصا اذا وجد دليل آخر خاص طور پر جب کوئی دوسری دلیل پائی جائے بھئی دیکھیے یہ مدلول تبھی ثابت ہوتا ہے جب دلیل پائی جائے جب کیا ہو دلیل پائی جائے جیسے روشنی تب ہی ہوگی جب سورج ہوگا सूरज होगा तो रोशनी हो लेकिन सूरज ना हो तो क्या फिर रोशनी नहीं हो सकती? फिर भी हो सकती है। हो सकता है कोई और सबब हो आपने आपने बिजली जला ली या आपने टार्च जला ली या कोई आपने आग जला ली तो देखो रोशनी के तो और भी सूरत हो सकती है। लिहाजा यहां पर भी आपने क्या कहा दलील क्या है आपने क्या कहा वकील को कब मजबूर करेंगे जब वकालत लाजिमा हो। जब क्या हो तवज्जो है जब वकालत लाजिमा हो और वकालत लाजिमा कब होती है जब अक़्द रहन के अंदर हो। तो वकालत लाजिमा हुई दलील और मजबूर करना यह है मदलूल। तवज्जो है वकालत लाजिमा होगी तो वकील को क्या करेंगे मजबूर करेंगे। तो वकालत लाजिमा हुई दलील और वकील को मजबूर करना ये क्या हुआ मदलूल। जब दलील होगी तो मदलूल भी पाया जाएगा। वकालत लाजिमा होगी तो वकील को भी क्या करेंगे मजबूर करेंगे। लेकिन इसका यह माना नहीं कि वकालत लाजिमा नहीं तो वकील को मजबूर भी नहीं कर सकते। दलील नहीं तो मदलूल भी नहीं तो ये जरूरी नहीं है। खास तौर पर जब कोई दूसरी दलील मौजूद हो। यहां पर बेशक वकालत लाजिमा नहीं लेकिन वकील को फिर भी मजबूर कर सकते हैं क्योंकि एक और दलील मौजूद है और वो क्या कि अगर वकील को मजबूर नहीं करेंगे तो मुर्तहिन का नुकसान होगा। बात समझ में आ रही है। ये माना है कि दलील दलील से मुराद है वकालत लाजिमा ला यदुल्लु अला अदमिल मदलूल मदलूल से मुराद है जबरे वकील। तवज्जो है दलील से क्या मुराद दलील 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 से मुराद वकालत लाजिमा और मदलूल से जबरे वकील यानी वकील को मजबूर करना। लिअन्न अदम अद-दलील ला यदुल्लु अला अदमिल मदलूल अदम दलील जो है वो अदम मदलूल पर दलालत नहीं करती यानी वकालत लाजिमा ना हो तो यह दलालत नहीं करती कि जबरे वकील भी नहीं होगा। खुसूसन इजा वुजीदा दलील उन आखर खास तौर पर जब कोई दूसरी दलील पाई जाए फिर तो मदलूल पाया जाएगा भाई। और दूसरी दलील क्या है कि मुर्तहिन का हक जाया होता है। फइन बाअहुल अदल फसमनुर रहनुन बस अगर आदिल आदमी ने बेच दिया उस रहन को फसमनुर रहनुन तो उसके समन जो है वो रहन होंगे। आदिल आदमी ने क्या किया वो तारीख आ गई आदिल आदमी ने उस रहन को बेच दिया उस गाड़ी को बेच दिया और समन वसूल कर लिए तो अब ये समन अभी अदायगी नहीं की इसके पास है तो ये समन अब रहन बन गए क्योंकि गाड़ी तो रहन होने से निकल गई वो तो मुश्तरी ले गया। ये माना है फइन बाअहुल अदल फसमनुर रहनुन अगर आदिल आदमी ने उस रहन को बेच दिया तो उसके समन जो है वो रहन होंगे। फहुल कुहू कहुल की ही तो इस समन का हलाक होना ऐसा ही है जैसे रहन का हलाक होना। तवज्जो है इस समन जो रहन के समन मिल गए इनका हलाक होना ऐसे ही है जैसे रहन का हलाक होना। और रहन हलाक होता था तो क्या होता था मुर्तहिन पर जमान आता था तो यहां पर भी मुर्तहिन पर जमान आएगा भाई। और वही अकल वाला जमान आएगा। फइन औफा समनहुल मुर्तहिना फस्तुहिक्का, अब वो सूरत बयान करने लगे हैं भाई। फइन औफा समनहुल मुर्तहिना, बस अगर आदिल ने अदा कर दिए उस रहन के समन, अल मुर्तहिना किसको, मुर्तहिन को, फस्तुहिक्का, फिर इस्तेहकाक निकल आया, हुआ जमीर किसको राजे कहते हैं, आइए रहनु यानी रहन, हुआ जमीर रहन को राजे यानी रहन का कोई मुस्तहिक निकल आया बेचने के बाद। बेचने के बाद आदिल ने क्या किया, उस गाड़ी को, उस रहन को बेच दिया है और समन लेकर फिर मुर्तहिन को भी दे दिए हैं। इसके बाद अब कोई मुस्तहिक निकल आया, उसने मुश्तरी के पास, खालिद ने गाड़ी देख ली, उसने कहा ये तो मेरी गाड़ी है, तो काजी के पास गया और काजी के पास जाकर उसने वो गाड़ी उससे ले ली। नहीं, फिर यहां तफसील है, मुस्तहिक निकल आया, मुस्तहिक निकल आया। अब दो सूरतें हैं, दो सूरतें हैं, वो जो गाड़ी है एक सूरत ये मुश्तरी के पास मौजूद है, अगर मुश्तरी के पास वो गाड़ी मौजूद है तो खालिद काजी के पास जाएगा, गवाह पेश करेगा और मुश्तरी से वो गाड़ी ले लेगा, तवज्जो है जी। और अगर वो गाड़ी मुश्तरी के पास तबाह हो गई या चोरी हो चुकी, किसी ने खालिद को इत्तला दी कि आपकी गाड़ी फला आदमी के पास थी जो मुश्तरी था, और मुश्तरी से पूछा तो गाड़ी चोरी हो चुकी है या तबाह हो चुकी है, जल चुकी है, अब ये काजी के पास जाएगा और अब जमान लेना है इसने उस गाड़ी का, तो किससे जमान ले सकता है, तो याद रखिए वो जो मुस्तहिक है मुश्तरी से भी जमान ले सकता है, और मुश्तरी फिर किससे लेगा, आदिल से, क्योंकि उसने उससे गाड़ी खरीदी थी, और आदिल फिर किससे लेगा, आदिल वो राहिन से भी ले सकता है, क्योंकि राहिन ने धोखा दिया था, उसने गैर की गाड़ी इसके पास रखवाई, और आदिल क्या कर सकता है, वही मुर्तहिन से भी ले सकता है वही समन जो उसको दिए थे। तवज्जो है, गौर से सुनना भाई, मसला है फैला ज्यादा हुआ है। देखो आदिल ने क्या किया, गाड़ी बेच दी, बेचने के बाद मुश्तरी के पास उसका कोई मुस्तहिक निकल आया, अब वो उसकी दो सूरतें हैं, वो गाड़ी जो है मुश्तरी के पास मौजूद होगी या गाड़ी हलाक हो चुकी होगी। अगर गाड़ी मुश्तरी के पास मौजूद है फिर तो वो मुस्तहिक उस गाड़ी को ले जाएगा काजी के जरिए, तो मुश्तरी ने तो किससे खरीदी थी, आदिल से, और उसको बाकायदा समन दिए थे, तो मुश्तरी जो है वो रुजू करेगा आदिल आदमी पर और उससे वो समन वापस ले लेगा, और आदिल आदमी उसने तो समन किसको दे दिए थे, मुर्तहिन को, लिहाजा वो मुर्तहिन से भी समन ले सकता है, और वो राहिन जिसने इसके पास रहन रखवाया था उससे भी समन ले सकता है। बात समझ में आ रही है, राहिन से भी ले सकता है क्योंकि उसी ने तो गाड़ी रखवाई थी, और मुर्तहिन से भी ले सकता है क्योंकि गाड़ी के समन उसने किसको दिए हैं, मुर्तहिन को, तो जब मुर्तहिन से समन ले लेगा तो मुर्तहिन ने तो समन किस लिए रखे थे अपने पास, देन के बदले में, तो जब समन वापस चले गए तो देन फिर उसी तरह भी उसने वसूल करना है, तो फिर वो किस पर रुजू करेगा, राहिन पर रुजू करेगा। सूरत समझ में आ गई, कहते हैं फइन औफा समनहुल मुर्तहिन नफस तुहिका आयिर रहनु, बस अगर आदिल ने अदा कर दिए उस रहन के समन मुर्तहिन को, फिर उस रहन का कोई मुस्तहिक निकल आया, फफिल हालिकी, तो उस हलाक होने वाले रहन में, देखो एक सूरत वो रहन क्या हो चुका है मुश्तरी के पास हलाक, और नीचे चार पांच सत्रों के बाद आ रहा है मतन में, वफिल काइमी अखज़हू, और उस सूरत में के रहन क्या हो, मौजूद हो, अभी हलाक नहीं हुआ। इबारत मिल गई, तो पहले हलाक वाली सूरत बतलाने लगे कि अगर रहन हलाक हो चुका है मुश्तरी के पास, कहते हैं फफिल हाल की हलाक होने वाली सूरत में, इदा हलाकर रहनु फी यदिल मुश्तरी, जब रहन हलाक हो गया मुश्तरी के कब्जे में, जम्मनल मुस्तहिकुर राहिना, तवज्जो है, रहन किसके पास हलाक हो चुका, मुश्तरी के पास, अब खालिद जो मुस्तहिक है अब वो किससे जमान ले सकता है, कहते हैं भाई वो राहिन से भी जमान ले सकता है, क्योंकि असल में ये गाड़ी किसने गसब की, राहिन ने, उसने रखवाई थी आदिल के पास, और चाहे तो आदिल आदमी से ले जमान, क्योंकि आदिल आदमी ने ये गाड़ी बेची थी आगे कि भाई तुमने कैसे मेरी गाड़ी बेच दी, और चाहे तो मुश्तरी से सामान ले ले, क्योंकि मुश्तरी ने कैसे उसकी गाड़ी पर कब्जा कर लिया खरीद कर। बात समझ में आ गई। वो तीनों पर रुजू कर सकता है, मुश्तरी पर रुजू करेगा तो मुश्तरी फिर किस पर रुजू करेगा, आदिल पर। तो कहते हैं वह जम्मनल मुस्तहिक राहिन कीमतहु, और जामीन बनाएगा मुस्तहिक जो है, यूं कहें जामीन बना सकता है मुस्तहिक जो है अर्राहिन, किसको, राहिन को, किस चीज का जामीन बनाएगा, कीमतहु उस रहन की कीमत का, कि वो मुझे अब दो भाई तुमने मेरी गाड़ी गसब की। वह सहल बेउल कब्जू, और बे भी सही और कब्जा भी, यानी समन पर कब्जा भी सही। भाई देखो अब ये सूरत समझो, अब बात आ गई गसब की, तवज्जो है गसब की। गसब किसे कहते हैं कि कोई शख्स किसी दूसरे की चीज पर जबरदस्ती कब्जा कर ले, उसको छीन कर उठा कर ले जाए, ये है गसब। और याद रखो गासिब पर लाजिम है, गासिब पर जमान आता है, जब तक वो चीज मौजूद है तब तक उस पर लाजिम है कि उसी चीज को वापस करे, और अगर वो चीज हलाक हो चुकी है तो उसको पूरी कीमत देनी पड़ेगी। यहां अकल वगैरह का मसला नहीं, पूरी पूरी क्या करना पड़ेगी, उस चीज की कीमत देना पड़ेगी। और याद रखो जब गासिब उस चीज की कीमत दे देता है तो यूं समझेंगे जिस वक्त इसने वो चीज गसब की थी उसी वक्त ये उसका मालिक बन गया था। भाई देखो ना, आप एक चीज खरीदने जाते हैं, आप जब उस चीज के समन जैसे ही देते हैं आप उसके मालिक बन जाते हैं। तो यहां पर भी चीज जब उसके पास हलाक हो चुकी है तो अब ये क्या कर रहा है, उसकी कीमत दे रहा है, बदल दे रहा है। जब बदल देगा तो ये उस चीज का मालिक बन जाएगा, बेशक खत्म हो चुकी है, या फर्ज करो इसने आगे बेच दी थी, क्या किया था, बेच दी थी, अब पता नहीं बाय कौन था, किधर चला गया, किधर ले गया, तो अब ये क्या करता है, उसकी कीमत दे। कहते हैं जब कीमत देगा तो ये उस चीज का मालिक बन जाएगा, उस मकसूबा शय का मालिक। लेकिन मालिक कब से शुमार करेंगे, अभी जब उसने पैसे दे दिए? कहते हैं नहीं, उस वक्त से मालिक शुमार करेंगे जब इसने वो चीज गसब की थी, जब उस वक्त से मालिक है और उसके बाद इसने गाड़ी को आगे बेचा है तो गोया इसने अपनी ही चीज को आगे बेचा, अपनी ही, लिहाजा उसकी वो बयान नाफिज हो जाएगी। सूरत समझ में आ गई। यहां पर भी मुस्तहिक ने किस पर रुजू किया, राहिन पर, किस पर, जिसने गाड़ी सबसे पहले गसब की थी, जब राहिन पर रुजू किया और उस राहिन ने उसको उस गाड़ी की कीमत दे दी, जब गाड़ी की कीमत दे दी तो राहिन उस गाड़ी का मालिक बन गया। कब, आज बना मालिक, या जिस वक्त गसब की थी उस वक्त से, जिस वक्त गसब की थी उस वक्त से मालिक बन गया। जब उस वक्त से मालिक बन गया तो गोया इसने अपनी ही चीज रहन रखवाई थी, जब अपनी ही चीज रहन रखवाई थी तो आदिल ने गोया इसी की गाड़ी बेची, जब आदिल ने इसी की गाड़ी बेची तो उसका बेचना भी सही, और गाड़ी बेचने के बाद आदिल आदमी ने उसके समन वसूल किए और वो समन वसूल करके उसने मुर्तहिन को दिए ताकि मुर्तहिन उन पर कब्जा कर ले, गोया उसने अपना देन वसूल कर लिया मुर्तहिन ने, तो वो मुर्तहिन का कब्जा भी सही हो गया, मुर्तहिन का उस पर कब्जा भी सही हो गया। यूं कहो मुर्तहिन को जो अदायगी थी वो अदायगी भी सही हो गई, बया भी सही हो गई और मुर्तहिन को अदायगी भी सही हो गई। तो ये कब्जे से मुराद मुर्तहिन को जो अदायगी कर दी, मुर्तहिन ने जो कब्जा कर लिया उस समन पर आखिर में आकर, वो कब्जा मुराद है, वो कब्जा भी सही हो गया। आदिल की बया भी सही और आदिल ने समन वसूल करके किसको दिए, मुर्तहिन को, और मुर्तहिन ने कब्जा कर लिया, ये मुर्तहिन का कब्जा सही, ये कौन सा कब्जा है, वो किस लिए कब्जा कर रहा है, वो अपनी देन को वसूल कर रहा है। तो मुर्तहिन का कब्जा जो इबारत में आ रहा है, वह सहल बेउ वल कब्जू, और बे भी सही है और मुर्तहिन का कब्जा भी सही है, तो ये मुर्तहिन का कब्जा मुराद है और मुर्तहिन ने तो कब्जा वसूली वाला किया, गोया उसने अपना देन वसूल कर लिया। तो ये माना है, देखिए ज़म्मन अल मुस्तहिक राहिन क़ीमतहू, तो हलाक होने वाली सूरत में वो मुस्तहिक जामिन बना सकता है राहिन को उस रहन की कीमत का। वह सहल बेउ, और वो बे भी सही हो गई, कौन सी बे, वो जो आदिल ने बे की थी, क्योंकि ये राहिन ही की चीज उसने बेची है, राहिन ने जब जमान अदा कर दिया वो शुरू से उस गाड़ी का मालिक है, वह तो वो बे भी आदिल की सही हो गई। वल कब्जू, और कब्जा भी सही, इस कब्जे से किसका कब्जा मुराद है, मुर्तहिन का, मुर्तहिन ने जो उस समन पर कब्जा किया, यानी यूं कहें मुर्तहिन को जो अदायगी की गई वो अदायगी भी सही हो गई। अविल आदला, अविल अदल, इसका आतफ है अर्राहिना पर। ऐ जम्मन अल मुस्तहिकुल अदला, मुस्तहिक आदिल आदमी को भी जामिन बना सकता है, उससे भी जमान ले सकता है कि गाड़ी तो तुमने बेची है, गाड़ी तुमने बेची है। चुनांचे अब सुनो, अब कैसी सूरत होगी, मुस्तहिक ने आदिल पर रुजू किया कि और काजी के पास ले गया कि काजी साहब इस आदमी ने मेरी गाड़ी बेची है, यह है गासिब, इसने गसब की है। चुनांचे काजी ने आदिल के खिलाफ फैसला किया और आदिल को गाड़ी की कीमत देना पड़ गई, उसकी कीमत ले लेगा ना, गाड़ी की कीमत किससे ले लेगा, आदिल आदमी से उस गाड़ी की कीमत ले लेगा, कौन वो मुस्तहिक। अब ये जो आदिल है ये आदिल राहिन पर भी रुजू कर सकता है क्योंकि राहिन ने तो इसके बाद गाड़ी रखवाई थी और जो इसने अदायगी की इसे वसूल कर ले, और ये मुर्तहिन पर भी रुजू कर सकता है। मुर्तहिन पर क्यों रुजू कर सकता है, क्योंकि हां क्योंकि इसने गाड़ी के समन वसूल करने के बाद किसको दे दिए थे, मुर्तहिन को दिए थे, तो उससे वापस समन ले लेगा वापस। अच्छा दूसरी बात ये याद रखो, जब ये उस मुस्तहिक ने किसको जामिन बनाया, आदिल को, जब आदिल इस गाड़ी के पैसे देगा तो ये मालिक बन जाएगा, गाड़ी का मालिक कौन बन गया, आदिल बन गया, बात समझ में आ रही। और जब आदिल इसका मालिक बन गया, और कब से मालिक बना, जब गाड़ी पर इसने कब्जा किया था, राहिन ने इसके हवाले की थी और इसने कब्जा किया था, तो उस वक्त से ये मालिक है। मालूम हुआ इसने जो गाड़ी बेची वो अपनी गाड़ी बेची थी या किसी और की, अपनी गाड़ी बेची, जब अपनी गाड़ी बेची थी तो उस गाड़ी के जो समन आए थे वो समन तो इसने किसको दिए थे, मुर्तहिन को दिए थे, इसने तो समझा था ये समन ये गाड़ी किसकी है, राहिन की है, लेकिन अब पता चला गाड़ी इसकी अपनी थी लिहाजा समन भी इसके अपने हुए, लिहाजा ये क्या करेगा, वो समन उससे ले लेगा और वो समन इसके अपने हो गए, वो समन इसके अपने हो गए। और फिर मुर्तहिन क्या करेगा, मुर्तहिन ने तो दैन वसूल कर लिया था समन के जरिए, अब मुर्तहिन के हाथ से वो समन फिर निकल गए, तो अब वो क्या करेगा, दैन के सिलसिले में फिर किस पर रुजू करेगा, राहिन पर रुजू करेगा। और नीस नीस इस सूरत में भी जो आदिल ने बै की वो बै भी उसकी सही हो गई क्योंकि ये तो मालिक बन गया था, क्या बन गया,
मालिक,
ये मालिक था, तो इसकी बै भी सही और कब्जा भी सही, यानी आदिल की बै सही और मुर्तहिन का उस समन पर कब्जा सही, यानी गोया उसको अदायगी सही हो गई, बात समझ में आ गई। ये माना है अविल आदला, या वो मुस्तहिक रुजू करेगा किस पर, आदिल आदमी पर, यानी उसकी कीमत का। सुम्मा हुआ राहिना, फिर वो किस पर रुजू करेगा, आदिल आदमी राहिन पर रुजू करेगा, भाई इसको धोखा असल में किसने दिया है, आदिल को, राहिन ने, तो वो राहिन पर भी रुजू कर सकता है और मुर्तहिन पर भी, दोनों बयान करने लगे हैं। देखो मुस्तहिक ने किसको जामिन बनाया, आदिल को, दूसरी सूरत कर रहे ना, आदिल को, जब आदिल को जामिन बनाया उससे जमान लिया है, तो आदिल में दो सूरतें हैं, वो आदिल राहिन पर भी रुजू कर सकता है और मुर्तहिन पर भी। ये माना है अविल आदला, या मुस्तहिक जामिन बनाएगा आदिल को, सुम हुआ राहिना, फिर वो आदिल किसको जामिन बनाएगा, राहिन को, किसको, एक सूरत आगे आ रहा है अविल मुर्तहिना, या किसको जामिन बनाएगा, मुर्तहिन को, तो कहते हैं सुम हुआ राहिना, फिर आदिल आदमी राहिन को जामिन बनाएगा, व सहा, और वो दोनों चीजें सही हो गई, कौन सी दो चीजें, बै भी सही और कब्जा भी सही, यानी आदिल की बै सही और मुर्तहिन का उस समन पर कब्जा सही, यानी गोया उसको अदायगी सही हो गई, और ये माना वसाहा, और वो दोनों भी सही हो गए। अविल मुर्तहिना, या वो आदिल किसको जामिन बनाएगा, मुर्तहिन को, इस मुर्तहिन का आतफ किस पर है, ये जो पीछे दो लफ्ज पीछे अर्राहिना आया भाई, कि वो फिर मुर्तहिन को जामिन बनाएगा किस चीज का, समन हो, उस गाड़ी के समन का जो उसने उसके हवाले किए थे, वह हुआ लहू, और वो समन इसी के हो जाएंगे, आदिल के, क्योंकि इसने अपनी गाड़ी बेची थी, तवज्जो है, इसने अपनी गाड़ी बेची थी और इसके समन इसके अपने थे और इसने ये समझकर मुर्तहिन को दिए थे कि ये तो शायद जैद की गाड़ी है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं ये तो इसकी अपनी गाड़ी है। जब जमान इसने दे दिया तो अब ये मुर्तहिन से वो समन वापस वसूल कर लेगा, वह हुआ लहू और वो इसी के होंगे। वरज अल मुर्तहिन अला राहिनिही बिदैनिही, और मुर्तहिन ने तो समन पर कब्जा किया था किस लिए, कि ये मेरा देन है शायद, और वो समन तो वापस चले गए आदिल के पास, तो अब मुर्तहिन क्या करेगा, अपने देन के सिलसिले में किस पर रुजू करेगा, राहिन पर। ये माना है वरजाल मुर्तहिनो आला राहिनी बिदैनी ही, और रुजू करेगा मुर्तहिन आला राहिनी ही उसके राहिन पर बिदैनी ही अपने देन के साथ। सूरत समझ में आ गई, अल मुस्तहिको इम्मा अयुजमीना राहिन कीमत रहनी, या तो मुस्तहिक जो है वो जामिन बनाएगा राहिन को रहन की कीमत का, लिअन्नहु गासिबुन, क्योंकि हकीकत में गासिब वो ही है। वहीन इदिन सहल बेउ व कब्ज़ उस्समनी, और उस वक्त वो बे भी सही हो जाएगी और समन पर कब्जा भी, यानी जो मुर्तहिन को अदायगी कर देगी, मुर्तहिन ने जो सम आदिल ने क्या किया, समन वसूल किए मुश्तरी से, बेची गाड़ी समन वसूल की और वसूल करके किसको दिए, मुर्तहिन को दिए, तो मुर्तहिन का जो समन पर कब्जा है वो भी सही, बल्कि ज्यादा वाज़ह लफ्ज़ यूं कहा जाए कि बे भी सही हो गई और मुर्तहिन को अदायगी भी सही हो गई। लिअन्न अर्राहिन मलकहु बि अदाए ज़मानी, इसलिए क्योंकि वो राहिन जो है वो उसका मालिक हो गया उस राहन का जमान अदा करने की वजह से, गोया शुरू से ही गाड़ी उसकी है जब से उसने गसब की है। वह इम्मा अयुजम मनल आदल अल कीमता, या वो मुस्तहिक आदिल आदमी को जामिन बनाएगा अल कीमता उस गाड़ी की कीमत का। लिअन्नहु मुतअद्दिन, क्योंकि उसने ज्यादती की है, मुतअद्दी ज्यादती करने वाला, अन्नहु मुतअद्दिन, इसलिए क्योंकि वो आदिल ज्यादती करने वाला है। भाई उसने क्या ज्यादती की है, कहते हैं बिल बैउ व तस्लीम, बेचने के जरिए और सुपुर्द करने से, उसने गाड़ी बेची और मुश्तरी के सुपुर्द की, वो ज्यादती करने वाला है तो उससे भी जमान ले सकता है। वहीन इजिन, और उस वक्त अल अदल बिल खियारी, आदिल आदमी को इख्तियार है, इम्मा अयुजम मिनर राहिन अल कीमता, या तो वो राहिन को जामिन बना दे उसकी कीमत का। वहीन इजिन सहल बेउ व कब्ज़ उस्समनी, और जब वो राहिन को जामिन बना देगा उस वक्त फिर बे सही हो जाएगी और समन पर कब्जा, यानी मुर्तहिन का समन पर कब्जा भी सही हो जाएगा, यानी मुर्तहिन को अदायगी सही हो गई। वह इम्मा अयुजम मिनल मुर्तहिना, या वो आदिल आदमी मुर्तहिन को जामिन बनाएगा, असमन लदी अद्दाहु इलैही, उस समन का जो उसने मुर्तहिन को अदा किए थे उसका जामिन बनाएगा, उससे वो ले लेगा। वह हुआ लहू, और वो उसी के होंगे, ऐजालिका समनु यकून लिल अदली, वो समन उसी आदिल आदमी के होंगे। फयरजिउल मुर्तहिनु अला राहिनिही बिदैनिही, तो फिर मुर्तहिन रुजू करेगा राहिन पर अपने देन के साथ। बात समझ में आ गई। वफिल कायमी, और अगर वो मबीआ क्या हो, कायम है, मौजूद है, हलाक नहीं हुआ, तो फिर क्या सूरत होगी, इधर देखिए, मुश्तरी के पास अभी वो गाड़ी मौजूद है तो मुस्तहिक जाकर वो गाड़ी ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, और फिर मुश्तरी समन के सिलसिले में किस पर रुजू करेगा, आदिल पर, और आदिल जो है फिर राहिन और मुर्तहिन दोनों पर रुजू कर सकता है। कहते हैं वफिल कायमी, और वो रहन जो मरहून चीज जो मौजूद हो, अखाजा हो अल मुस्तहिकुल मरहूना, अखाजा ले लेगा, कौन लेगा, हुआ जमीर किसको राजे, आगे बतलाया अल मुस्तहिक, यानी के मुस्तहिक, अखाजा हो, फिर यह हा जमीर मफूल की, क्या ले लेगा वो मुस्तहिक, अल मरहूना, उस मरहून चीज को। वफिल कायमी, और वो मरहून जो मौजूद हो, अखाजहू अल मुस्तहिकुल मरहूना, ले लेगा यानी वो मुस्तहिक उस मरहून को, मिन मुश्तरी ही उसके खरीदार से। वरजअ हुआ अलल अदली, और फिर वो मुश्तरी रुजू करेगा आदिल पर, क्योंकि उसने चीज उसको बेची थी, बिसमनी ही, किस चीज के साथ रुजू करेगा, समन के साथ, यानी समन उससे लेगा क्योंकि इसने समन दिए थे उसको। वराजा हुआ अलल आदली भी समनी ही, और मुश्तरी रुजू करेगा आदिल आदमी पर उसके समन के साथ, क्योंकि उस आदिल ने उस मुश्तरी से समन वसूल किए थे। सुम हुआ अलर राहिनी बिही, और फिर वो जो आदिल आदमी है वो रुजू करेगा समन के साथ किस पर? राहिन पर। राहिन पर, राहिन पर रुजू करेगा। नहीं, इस बात समझ में आई भाई? देखो ना, मुश्तरी से तो गाड़ी मुस्तहिक ले गया, अब मुश्तरी ने तो अपने समन दिए थे आदिल को, तो मुश्तरी जाकर क्या करेगा? उसे अपने समन ले लेगा, और जब उससे समन ले लिए, उसने तो समन किसको दे दिए थे? आदिल ने। आदिल ने तो समन किसको दे दिए थे? मुर्तहिन को दे दिए थे। लिहाजा आदिल को फिर वही इख्तियार, वो चाहे तो मुर्तहिन से वो समन ले ले, और चाहे तो उस समन के बारे में किस पर रुजू कर दे? राहिन पर रुजू कर दे। ये माना है सुम्मा हुआ अलर राहिनी बिही, फिर जो आदिल है वो रुजू करेगा राहिन पर बिही ऐ बिस समनी, किसके साथ? उस समन के साथ। वसहल कब्जू, और कब्जा सही हो जाएगा। बाज जगह समन की बात हो रही है, बाज जगह कीमत की बात हो रही है। बात समझ में आ रही? जिस जिसने समन लिए हैं, या जिसने समन का जिसका नुकसान हुआ है, तो वो समन के साथ ही रुजू करेगा। समन और है, कीमत और है। समन तो गाड़ी की मेरे और आपके दरमियान, मसलन 10 लाख वाली गाड़ी है, मेरे और आपके दरमियान तय हुआ 11 लाख में, हम मैंने बेच दी गाड़ी, कितने की थी? 10। मैंने कितने की बेच दी? 11 में। तो समन तो हो सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा हो। और कीमत मार्केट में एक रेट होता है, एक चीज का ताजरों को अंदाजा होता है। कई ताजरों से आप पूछेंगे तो वो चीजों के रेट बताएंगे, उनके रेट करीब करीब होते हैं। तो ये है उस चीज की कीमत। मसलन गाड़ी की कीमत है 10 लाख और समन कितने हैं? 11 लाख। तवज्जो है? अब देखो, मुश्तरी से कौन ले गया? मुस्तहिक। तो मुश्तरी जाकर आदिल से उसकी कीमत नहीं लेगा। कीमत तो वहां ली जाती ना जहां समन ना होते। यहां मुश्तरी का तो नुकसान कितना हुआ है? कीमत का नुकसान हुआ है या समन उसके हाथ से निकले हैं? समन निकले हैं। तो वो समन लेगा किससे? आदिल आदमी से। कीमत 10 लाख है, लेकिन मैंने तो कितने दिए थे? 11 लाख। तो मुझे 11 लाख चाहिए, मेरे तो 11 लाख हाथ से निकले हैं। तो वो समन जाकर लेगा किससे? आदिल से। और आदिल का अब कितना नुकसान हो गया? वो समन का नुकसान हुआ या कीमत वाला हुआ? समन। तो वो भी रुजू समन के साथ ही करेगा। बात समझ में आ गई? और पिछले मसले में था कि मुस्तहिक जो था, उसने मुश्तरी के बजाय बराह रास्त किस पर रुजू किया था? राहिन पर। और राहिन पर जब रुजू करेगा तो कीमत लेगा उससे अपनी गाड़ी की कीमत, क्योंकि मुस्तहिक ने का तो कोई समन का नुकसान नहीं हुआ, उसका तो गाड़ी का नुकसान हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो वहां कीमत की बात थी और यहां समन की है। तो जहां जहां हाथ से समन जिसके निकले हैं, वो समन के साथ रुजू करेगा, और जिसके हाथ से कोई चीज सिर्फ गाड़ी निकली है, तो वहां कीमत के साथ रुजू होगा। ये माना है सुम्मा हुआ अलर राहिनी बिही, फिर जो है आदिल वो रुजू करेगा राहिन पर बिही ऐ बिसमनी, समन के साथ। वसहल कब्जू, और मुर्तहिन का उस समन पर कब्जा सही हो गया। मुर्तहिन ने जो समन पर कब्जा किया था किसने दिए? आदिल ने। वो कब्जा क्या हुआ? सही हो गया, क्योंकि क्योंकि आदिल का जो नुकसान हुआ, उसने पहले समन किसको दिए थे? मुर्तहिन को। और अब इसने अपनी जेब से समन दिए। अब ये मुर्तहिन से भी ले सकता था, लेकिन इसने तो किससे ले लिए? राहिन से ले ली। जब राहिन से ले ली, इसका तो नुकसान पूरा हो गया, लिहाजा मुर्तहिन का उस समन पर कब्जा सही, वो उसने अपने देन में वसूल कर लिया। ये माना है वसहल कब्ज, और मुर्तहिन का कब्जा सही हो गया समन पर। औ अलल मुर्तहिनी, या ये आदिल किस पर रुजू करेगा? मुर्तहिन पर भी समन ही उसके समन के साथ, क्योंकि समन उसने किसको दिए थे? मुर्तहिन। सुम हुआ अलर राहिनी बिदैनी ही, और फिर मुर्तहिन रुजू करेगा राहिन पर देन के साथ, क्योंकि मुर्तहिन ने तो समन अपने पास देन की वसूली के तौर पर रखे थे, देन तो वसूल नहीं हुआ, वो तो वापस हाथ से समन निकल गए, तो अब वो देन के साथ रुजू करेगा राहिन पर। ये माना है सुम हुआ अलर राहिनी भी दैनी ही, फिर मुर्तहिन जो है वो रुजू करेगा राहिन पर अपने देन के साथ। फिर वही इशारा कर रहे हैं, कहते हैं अल अदलु बिल खियार, आदिल आदमी को इख्तियार है। तवज्जो है? मुस्तहिक ने अपनी गाड़ी किससे ले ली, मुश्तरी से, और मुश्तरी ने अपने समन किससे ले लिए, आदिल से, और आदिल ने तो वो पैसे किसको दे दिए थे, समन मुर्तहिन को, तो आदिल को अब इख्तियार है, चाहे तो मुर्तहिन से वो समन वापस ले ले और चाहे तो राहिन से समन ले। तो कहते हैं अइल आदिल बिल खियार, आदिल आदमी को इख्तियार है, इम्मा यरजिआ अला राहिन बिसमन, या तो वो रुजू करे राहिन पर समन के साथ, वहीन इज़िन सहा कब्ज़ुल मुर्तहिनी समना, और इस सूरत में मुर्तहिन का समन पर कब्जा सही हो गया, उसने अपना देन वसूल कर लिया। वह इम्मा अय्यर जिया अल मुर्तहिनी, या वो आदिल रुजो करेगा मुर्तहिन पर, यानी उसे वो समन वापस ले लेगा। सुम्मल मुर्तहिन उयर जिया अल राहिनी भी दैनी ही, फिर मुर्तहिन रुजो करेगा राहिन पर अपने दैन के साथ कि मेरा दैन मुझे दे दो, वो समन तो वापस मेरे हाथ से निकल गए। वह इल्लम यश्तारित तौकील फिर रहनी, और अगर शर्त नहीं थी तौकील की फिर रहनी रहन में। अच्छा, अब दूसरी सूरत आ गई भाई, ये वो सूरत थी जब आकदे रहन के अंदर ही उस आदिल आदमी को वकील बनाया गया था। तवज्जो है, जब आकदे रहन ही के अंदर एक आदमी को वकील बनाया गया है, तो अब इस तौकील का ताल्लुक दोनों के साथ है। किसके साथ? तवज्जो है, किस चीज का वकील बनाया? रहन का, और रहन के साथ दोनों का हक वाबस्ता है। जब दोनों का हक वाबस्ता है और अक़्दे रहन के अंदर उसको वकील बनाया है, तो आपने पढ़ा है कि ये वकालत लाजमी होती है और इसको ना राहिन माजूल कर सकता है और ना मुर्तहिन माजूल कर सकता है। अब दूसरी सूरत है कि अक़्दे रहन में वकील नहीं बनाया, बाद में वकील बनाया, सिर्फ किसने बना दिया? राहिन ने। किसने? बाद में वकील बनाया राहिन ने कि जाओ भाई मेरी वो गाड़ी बेच दो और बेचकर समन मुर्तहिन को अदा कर दो। इस सूरत में अगर वो जमान मुस्तहिक आदमी आदिल से जमान लेता है, या वो मुश्तरी आकर जमान किससे लेता है? आदिल आदमी से, तो फिर आदिल आदमी मुर्तहिन पर रुजू नहीं कर सकता चाहे वो उसको पैसे दे चुका हो। तो वह जो है, मसला समझ में आ रहा है? मुस्तहिक ने किससे आकर जमान वसूल किया? आदिल से, या मुश्तरी ने आकर समन किससे वसूल किया? आदिल से, और आदिल तो वह समन किसको दे चुका? मुर्तहिन को। तो क्या अब भी ये आदिल आदमी राहिन और मुर्तहिन दोनों पर रुजू कर सकता है? उसे इख्तियार है? कहते हैं नहीं, अब उस अब तो आकदे रहन के अंदर तौकील नहीं थी, बाद में इसको किसने वकील बनाया है? राहिन का, लिहाजा मुर्तहिन पर रुजू नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है जैसे मैं किसी को कहूं कि भाई ये मेरी गाड़ी ले जाओ और इसको फरोख्त करो और इसके पैसे जैद को दे दो। किसको दे दो? तो उसने पैसे जैद को दे दिए और बाद में उस गाड़ी का कोई और मुस्तहिक निकल आया और उसने आकर आदिल से पैसे वसूल किए, तो आदिल अब जैद पर रुजू नहीं कर सकता कि तुम्हें तो मैंने पैसे दिए थे। क्यों? वो तो मैंने उसको कहा था कि उसको पैसे दे देना। बात समझ में आ गई? लिहाजा अब उसका इस तौकील से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने पैसे वसूल कर लिए भाई, तो लिहाजा अब वो सिर्फ राहिन पर रुजू करेगा। वह इल्लम यश्तरित तौकील फिर रहनी, और अगर वकील बनाना शर्त नहीं था रहन में, अक़्द रहन में, तो रजअ अल अदल अल राहिनी फकत, तो रुजू करेगा आदिल सिर्फ राहिन पर। कब्ज़ल मुर्तहिन समनहु औ ला, मुर्तहिन ने समन पर कब्जा किया हो या कब्जा न किया हो, वो सिर्फ राहिन पर रुजू कर सकता है, मुर्तहिन पर रुजू नहीं कर सकता। ऐ मा ज़ुकिरा खियारुल अदल बैन तज़मीन अर्राहिनी अविल मुर्तहिनी, कहते हैं वो जो जिक्र किया गया कि आदिल आदमी को इख्तियार होगा कि वो ज़ामिन बनाए राहिन को या मुर्तहिन को, इन्नमा यकूनु इज़ा कानतिल वकालतु मशरूतन फी अक़्दिर रहनी, कहते हैं ये उस वक्त होगा जब वकालत की शर्त लगाई गई हो अक़्दिर रहन में। फ़इन्नहु हीनज़िन तअल्लक़ा हक़ुल मुर्तहिनी बिल वकालति, तो उस वक्त मुर्तहिन का हक भी मुतअल्लिक़ हो गया वकालत से। फलिल अदल तज़मीन अल मुर्तहिनी, तो फिर उस आदिल को मुर्तहिन को भी जामिन बनाने का हक हासिल है, जायज है उसके लिए कि मुर्तहिन को जामिन बनाए। क्यों? लिअन्नहु बाअहु लिहक़्हि, इसलिए क्योंकि उसने उस रहन को बेचा था, उस आदिल आदमी ने उस रहन को बेचा था ले हक ही अहले हक मुर्तहीनी, किसके हक की वजह से? मुर्तहीन के हक की वजह से, लिहाजा वो मुर्तहीन पर भी रुजू कर सकता है। अम्मा इजा लम तकुन मशरूततन फिर रहनी, और अगर वकालत मशरूत न थी रहन में, तकुन उकल वकालतिल मुफरदती, तो ये वकालतें मुफरदा की तरह हुई, आम अकेली वकालत की तरह, एक रहन वाली वकालत एक आम वका, तो वकालतें मुफरदा यानी अकेली वकालत जो यानी जो सिर्फ एक राहिन की तरफ से है। فَإِنَّهُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَكَالَتِ مُفْرَدَة, कोई आदमी मैंने जैसे सूरत बयान कर दी, मैंने किसी को कहा कि ये गाड़ी लो मेरी और इसको ले जाकर बेच दो और पैसे समन किसको दे देना, वो तीसरे जैद को दे देना, तो बाद में वो कोई और मुस्तहक निकल आया और उन्होंने आकर वकील से जमान वसूल किया, तो वकील मुवक्किल पर रुजू करेगा, जिसको पैसे दिए हैं उस पर रुजू नहीं कर सकता भाई। ये माना है कल वकालत इन मुफरदाती, जैसे कि वकालत मुफरदा है, फैन नहु इदा बा अल वकील, इसलिए क्योंकि जब वकील बेच देता है, वकील ने कोई चीज बेच दी, वह अद समन इला आखरा, और पैसे समन अदा करिए किसी दूसरे को भी, अमरिल मुअक्किली, किसके हुक्म से? मुअक्किल के हुक्म से। सुम लाहिकहु उहदतुन, फिर उसको कोई तावान या जमान लाहिक हुआ, ला यरजू अलल काबिजी, तो वो समन पर कब्जा करने वाले पर रुजू नहीं कर सकता। फहा हुना, यहां पर भी ला यरजू इल्ला अलर राहिनी, आदिल जो है वो रुजू नहीं करेगा मगर सिर्फ राहिन पर ही, मुर्तहिन पर रुजू नहीं कर सकता। सवा उनका बजल मुर्तहिन उस समन औ लम यकबिज, बराबर है कि मुर्तहिन ने समन पर कब्जा किया हो या कब्जा न किया हो। भाई मुर्तहिन ने कब्जा किया हुआ है समन पर, फिर तो बात बनती है कि आप कहें भाई क्यों नहीं रुजू कर रहे आप उस पर, वो कहेगा नहीं भाई इसके इस वकालत के साथ इसका ताल्लुक नहीं था, ये तो मुझे मुवक्किल ने कहा था कि पैसे इसको दे दो। तवज्जो है, फिर सुनो, कहते हैं कि इस सूरत में जब अक़्दे रहन के बाद वकील बनाया गया है, फिर आदिल ने उस चीज को रहन को बेच दिया, फिर उसका तवज्जो है, फिर उसका कोई मुस्तहिक निकल आया, तो ये आदिल आदमी सिर्फ राहिन पर रुजू करेगा, मुर्तहिन पर रुजू नहीं करेगा, चाहे वो समन जो वसूल हुए थे वो उसने मुर्तहिन को दिए हों या न दिए हों। भाई दिए हों फिर तो रुजू की बात भी समझ में आती है, अगर दिए ही नहीं उसने मुर्तहिन को समन, फिर तो मालूम हुआ समन इसके पास है, फिर रुजू किस चीज का? तवज्जो है, समन तो इसके पास ही है ना, इसका नुकसान हुआ तो बस वही समन ही हाथ से निकलेगा और तो कुछ नहीं होगा, इस तो ये रुजू किस तरह करेगा? कहते हैं उसकी भी सूरत है, सूरत ये कि इसने समन लिए लिए थे, गाड़ी के समन वसूल कर लिए, मुर्तहिन को अभी दिए नहीं थे कि वो समन इसके पास चोरी हो गए और हलाक हो गए, और वो तो इसके पास बतौर अमानत के थे, क्या थे? अमानत के तौर पर थे, लिहाजा इस पर जमान तो कोई नहीं आएगा, आदिल आदमी पर तो जमान नहीं आता, वो तो एहसान कर रहा है कि दोनों की चीज उसने अपने पास रख ली है, लिहाजा इस पर जमान नहीं आएगा। लिहाजा इस सूरत में देखो, गाड़ी का कोई और मुस्तहिक निकल आया और उसने आकर इसे गाड़ी के समन वसूल कर लिए, लेकिन अपनी गाड़ी के असल समन जो इसने लिए थे वो तो इसके पास जाया हो गए, अब इस बेचारे का नुकसान हो गया, वो जो गाड़ी के असल समन थे वो भी जाया हो गए और जो मुश्तरी है उसने भी आकर इससे जमान ले लिया, तो इसके तो समन जितना नुकसान हो गया, तो वो किस पर रुजू करेगा? राहिन पर क्या करेगा? रुजू करेगा, मुर्तहिन पर रुजू नहीं। सूरत समझ में आ गई? कहते हैं वह सूरत मालम यकबिज, और सूरत वो सूरत जिसमें इसने कब्जा ना किया हो, कि अन अल-अदल बाअर रहन बि अम्रि राहिनी, वो ये कि आदिल आदमी ने रहन को बेच दिया राहिन के हुक्म से, वज़ाअ समनु फी यदिल अदली बिला तअद्दीही, और वो समन जाया हो गए आदिल आदमी के कब्जे में बगैर उसकी ज्यादती के, उसने कोई ज्यादती नहीं की, अपनी तरफ से पूरी हिफाजत की थी, लेकिन वो समन चोरी हो गए या जाया हो गए। सुम मस्तुहिक अल मरहून, फिर उस मरहून चीज का कोई मुस्तहिक निकल आया, फ़ज़मानुल्लज़ी यलहक़ुल अदला, फिर वो जमान जो आदिल को लाहिक होगा, यरजिउ बिही अलर राहिनी, तो वो उसके साथ रुजू करेगा किस पर? राहिन पर। राहिन पर सूरत समझ में आ गए? फ़इन हलकर रहनु माल मुर्तहिनी फ़स्तुहिक व ज़मना, अब तीसरी सूरत आ गई भाई, तवज्जो से भाई, ये जरा मुश्किल सूरत है। सूरत ये कि زید نے عمر سے دین لیا اور اپنی گاڑی مرتہین کے پاس بطور ضمانت کے رکھوا دی. مرتہین کے پاس, اب عادل نہیں ہے بلکہ کس کے پاس ہے گاڑی؟ مرتہین. عادل کے پاس گاڑی تھی اور اس کا کوئی مستحق نکلا تھا, وہ تفصیل گزر گئی. اب گاڑی کس کے پاس ہے؟ مرتہین کے پاس. اور پھر مرتہین کے پاس یہ رہن ہلاک ہو گیا, یہ گاڑی ہلاک ہو گئی, جل گئی. بات سمجھ میں آ گئی, یہ گاڑی ہلاک ہو گئی. پھر اس گاڑی کا کوئی مستحق نکل آیا, پتہ لگا یہ تو کسی اور کی گاڑی زید نے اس کے حوالے کی تھی. اب وہ جو مستحق ہے اس کو اختیار ہے, وہ چاہے تو زید پر رجوع کرے جو راہن ہے, کیونکہ اس نے گاڑی اصل میں غصب کی تھی, اور وہ چاہے تو مرتہین پر رجوع کرے کیونکہ مرتہین نے گاڑی پر قبضہ کر کے زیادتی کی ہے, غیر کی گاڑی پر قبضہ کیا ہے. تو وہ دونوں پر رجوع کر سکتا ہے. توجہ ہے
جی.
اب دیکھنا, سنو بھائی, عجیب مسئلہ. اگر تو وہ راہن پر رجوع کرتا ہے مستحق اور آ کر اسے گاڑی کا سامان لے لیتا ہے, تو راہن کب سے گاڑی کا مالک بن گیا؟ جب سے غصب کیا. تو گویا جب اس نے مرتہین کو گاڑی دی تو اپنی ہی گاڑی دی, تو مرتہین کے حوالے کرنا بھی صحیح اور مرتہین کا اس پر قبضہ بھی صحیح, اور وہ رہن ہے اور وہ رہن مرتہین کے پاس ہلاک ہو گیا, اور مرتہین کے پاس جب رہن ہلاک ہو جائے تو کس کے بدلے ہلاک ہوتا ہے؟ دین کے, دین کے بدلے ہلاک ہوتا ہے. لہذا اس کا دین گویا اس نے وصول کر لیا, کیونکہ رہن, اس رہن پر قبضہ کس لیے ہوتا ہے؟ وصولی کے لیے ہوتا ہے نا. تو گویا اس نے اپنا دین وصول کر لیا. صورت سمجھ میں آ گئی. دوسری صورت, پہلی صورت میں مستحق نے کس پر رجوع کیا تھا؟ راہن پر. توجہ سے سنو, مشکل مقام ہے. دوسری صورت, مستحق نے مرتہین پر رجوع کر لیا جس کے قبضے میں گاڑی ہلاک ہوئی ہے, مرتہین کو قیمت دینا پڑ گئی گاڑی کی. تو اب یاد رکھو, مرتہین اس گاڑی کی قیمت بھی راہن سے وصول کرے گا اور اپنا دین بھی وصول کرے گا. توجہ ہے. اب اس پر زمان کوئی نہیں. پچھلی صورت میں کیا تھا؟ گاڑی مرتہین کے پاس ہلاک ہوئی تھی تو مرتہین پر بھی تو زمان آیا تھا نا, اور اس کے ذریعے اس نے گویا دین اپنا نہیں. توجہ, میرے خیال تھک گئے, تھک گئے بھائی. دیکھو, پچھلی صورت میں ہلاک ہوئی تھی تو مرتہین نے, بھائی دیکھو نا, اس نے زمان کس سے لیا؟ مستحق نے, راہن سے لیا, اور گویا راہن نے جب سے غصب کی وہ کیا بن چکا گاڑی کا؟ مالک. جب مالک بنا تو اپنی ہی گاڑی اس نے مرتہین کے پاس رکھوائی, اور وہ رہن ہے, اور وہ رہن مرتہین کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس پر کیا آتا ہے؟ زمان. تو اس پر زمان آیا اور دین کیا ہو گیا؟ اس سے ساقط ہو گیا. فرض کرو دین بھی اتنا ہی تھا. بات سمجھ میں آگی؟ ورنہ تو عقل کو دیکھا جاتا ہے, تو عقل کو تو یہاں بھی دیکھنا ہے, لیکن فرض کرو وہ برابر تھا تو اس نے وصولی کر لی. اب دوسری صورت, کہ مستحق نے راہن پر رجوع نہیں کیا, اس نے مرتہین پر رجوع کر لیا کہ تمہارے پاس میری گاڑی تھی, ہلاک ہوئی ہے, قاضی کے پاس لے گیا اور اس نے گاڑی کی قیمت اس سے وصول کر لی. اب مرتہین جو ہے, وہ جو قیمت اس نے کس کو دے دی گاڑی کی؟ مستحق کو. وہ قیمت بھی وصول کرے گا راہن سے اور اپنا دین بھی وصول کرے گا. توجہ ہے. وہ قیمت بھی وصول کرے گا اور دین بھی. بھائی کیوں؟ یہ گاڑی تو مرتہین کے پاس ہلاک ہوئی ہے, مرتہین پر زمان آتا ہے, اور رہن پر قبضہ کس لیے ہوتا ہے؟ دین کی وصولی کے لیے. تو گویا اس نے دین تو اپنا وصول کر لیا ہے. توجہ ہے. اس نے دین تو اپنا وصول کر لیا ہے, تو اب صرف قیمت میں رجوع کرنا چاہیے. یہ ایک زائد خرچہ اس کے اوپر آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں نہیں, اس صورت میں یہ جو مرتہین ہے وہ قیمت بھی لے گا اور دین بھی لے گا. کیوں؟ وجہ یہ, اب وجہ سنو. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب مستحق نے اس پر رجوع کیا, قیمت ادا کرے گا تو یہ گاڑی کا مالک بن گیا. کیا بن گیا؟ مالک بن گیا. جب گاڑی کا مالک بن گیا تو معلوم ہوا اس کے پاس اپنی ہی چیز ہلاک ہوئی, اس کے پاس تو کوئی رہن تھا ہی نہیں, اپنی چیز ہلاک ہو گئی. تو اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اس نے اس سے زمان لے لیا, اس نے اس کی قیمت دے دی, قیمت دے دی. تو قیمت ادا کرتے ہی یہ کیا بن گیا؟ مالک بن گیا. یہ مالک بن گیا. और जब मालिक बन गया तो मालूम हुआ जो ये चीज इसके पास थी वो इसकी अपनी थी, वो तो राहिन की थी ही नहीं, तो रहन का कब्जा टूट गया, खत्म हो गया, रहन वाला कब्जा ही ना रहा। रहन वाला कब्जा था तो इस पर जमान आया था, तवज्जो है, अब तो रहन वाला कब्जा ही नहीं, ये तो गोया इसकी अपनी चीज इसके पास हलाक हुई, और इसको धोखा किसने दिया था? राहिन ने। तो लिहाजा ये जो इसको कीमत देना पड़ी उस मुस्तहिक को, ये कीमत भी लेगा उस किससे? राहिन से। और इसके पास तो रहन कोई था ही नहीं, ये तो इसकी अपनी चीज हलाक हुई, लिहाजा वो देन भी उससे ले लेगा, देन भी उससे ले लेगा, क्योंकि रहन था ही नहीं यहां। तो यहां दो सूरतें बन गई, मुस्तहिक राहिन पर भी रुजू कर सकता है और मुर्तहिन पर भी। राहिन पर रुजू करेगा तो फिर इस सूरत में रहन सही और जमान भी सही और देन वसूल हो चुका है, सिर्फ वो गाड़ी की कीमत उस मुस्तहिक को दे देगा। बात समझ में आ गई? देन वसूल, मुर्तहिन ने देन वसूल कर लिया क्योंकि उसके कब्जे में रहन हलाक हुआ है। और अगर मुस्तहिक किस पर रुजू करे? मुर्तहिन पर। तो फिर मुर्तहिन क्या करेगा? वो राहिन पर रुजू करेगा, कीमत भी गाड़ी की लेगा और अपना देन भी लेगा। सूरत समझ में आ गई? देखिए, फइन हलाका रहनु माल मुर्तहिनी, पस अगर वो रहन हलाक हो गया माल मुर्तहिनी मुर्तहिन के साथ, यानी उसके पास उसके कब्जे में हलाक हो गया, रहन हलाक हो गया, फस्तुहिक्का हलाक होने के बाद फिर उसका कोई मुस्तहिक निकल आया, वज़म्मना राहिना, और उस मुस्तहिक ने राहिन को जामिन बनाया कीमतहु उस रहन की कीमत का, तो हलाका भी दैनी ही, तो ये रहन हलाक हो गया उसके देन के बदले किसके? मुर्तहिन के, क्योंकि मुर्तहिन के पास हलाक हुआ है ना पीछे बताया, तो हलाका भी देनी ही, तो ये रहन हलाक हो गया मुर्तहिन के देन के बदले, अयकून मुस्तौफियन दैनहू, यानी मुर्तहिन जो है वो वसूल करने वाला हो गया अपने देन को, उस पर जमान आया और उसने अपने देन गोया वसूल कर लिया, वह इन जमन अल मुर्तहिना, और अगर मुस्तहिक ने मुर्तहिन को जामिन बनाया, रजा अल राहिनी बिकीमत ही व बिदैनी ही, तो वो रुजो करेगा राहिन पर उस रहन की कीमत के साथ भी और अपने देन के साथ भी, अल मुस्तहिक बिलखियारी बैन तजमीनी राहिनी अविल मुर्तहिनी, यानी मुस्तहिक जो है उसको इख्तियार है कि वो राहिन को जामिन बनाए या मुर्तहिन को, फैंजम मना राहिना, अगर उसने राहिन को जामिन बनाया तो मलका हो, तो राहिन उस रहन का मालिक बन गया, भी अदा इस जमानी, तवज्जो है, जमान अदा करने की वजह से वो रहन का मालिक बन गया, फसहर रहनु, तो इसका रहन रखवाना सही, तो उसका रहन सही हो गया, वह इन जमन अल मुर्तहिना, और अगर उसने मुर्तहिन को जामिन बनाया तो यर्जिउ अल राहिनी बिल कीमती, तो वो रुजू करेगा राहिन पर किसके साथ? उस गाड़ी की कीमत के साथ जो उसने मुस्तहिक को दी है। क्यों राहिन पर क्यों रुजू करेगा? कहते हैं ली अन्नहु मगरूरुन मिन जिहति राहिनी, इसलिए क्योंकि वो मगरूर कहते हैं जिसको धोखा दिया गया हो, इसलिए क्योंकि उसको धोखा दिया गया राहिन की जानिब से, उसको धोखा किसकी तरफ से मिला है? राहिन की तरफ से, लिहाजा वो कीमत जो इसके हाथ से निकली है और मुस्तहिक ने वसूल किया वो अब राहिन से ले लेगा। वह बिदैन, इस बिदैन का आतफ है पीछे जो बिलकीमा आया तीन चार लफज कबल, और वो रुजू करेगा राहिन पर देन के साथ भी। भाई देन के साथ क्यों रुजू करेगा? कहते हैं ली अन्नहुन तकज़ा कब्ज़ुहू, इसलिए क्योंकि इसका कब्जा टूट गया, पता चला वो जो रहन पर कब्जा था वो तो कब्जा रहन पर था ही नहीं, वो तो इसकी अपनी चीज थी, क्योंकि इसने मुस्तहिक को मुस्तहिक को मुर्तहिन ने दी है कीमत ना, तो मालिक कौन बना? मुर्तहिन बना, तो गोया राहिन की तो चीज ही नहीं है, अपनी चीज है, तो रहन था ही नहीं इसके पास। बात समझ में आ गई? लिअन्नहुन तकज़ा कब्ज़ुहू, इसलिए क्योंकि इसका रहन पर कब्जा जो है वो टूट गया, फयऊदु हक़ुहू कमा काना, तो इसका वो हक यानी वो जो देन है वो वापस लौट आएगा, कमा काना जैसे वो था, यानी कोई रहन आया ही नहीं, तो रहन ही जब नहीं आया तो वसूली कहां से भाई? कीला अलैही, इस पर कहा गया है यानी एतराज किया गया है, एतराज इस पर किया भाई बाज उलमा ने, बाज फुकहा ने, वो फरमाते हैं कि भाई देखो, इधर देखिए भाई, कि मिल्कियत उस शख्स की साबित होती है जिस पर जमान आए, जिस पर
जमान।
और यहां पर अव्वलन जमान किस पर आया, ये दूसरी सूरत में है, अव्वलन जमान आया मुर्तहिन पर, और फिर मुर्तहिन ने किससे वसूल किया, राहिन से, तो गोया जमान राहिन पर आया। जब राहिन पर जमान आया तो मिल्कियत उसकी होनी चाहिए, जब मिल्कियत उसकी होनी चाहिए तो रहन रखवाना सही होना चाहिए, जब रहन रखवाना सही है तो वो रहन तो हलाक हो गया किसके पास, मुर्तहिन के पास। जब मुर्तहिन के पास रहन हलाक हुआ तो गोया इसने अपना दैन तो वसूल कर लिया, तो लिहाजा दैन में तो रुजू नहीं करना चाहिए। यह एतराज है। कीला अलैहि, इस पर एतराज किया गया है, कहा गया है कि लम्मा कान करार उस जमाने अलर राहिनी, कि जब जमान का करार, जमान का ठहरना किस पर है, राह, जमान राहिन पर ठहरा, वल मिल्क फिल मजमून यसबुतुलिमन अलैहि करार उस जमान, और मजमून चीज के अंदर यानी जिस चीज का जमान आए उसके अंदर मिल्कियत जो होती है, यसबुतु वो साबित होती है, लिमन अलैहि करार उस जमान, जिस पर जमान ठहरता है, जिस पर जमान आता है, फतबयना अन्नहु रहना मिल्का नफसिही, तो बात जाहिर हो गई कि राहिन ने अपनी मिल्कियत रहन रखवाई थी। बात समझ में आ गई। अच्छा फिर सुनो भाई, दोबारा सुनो, यहां पर बास फुकहा ने एतराज किया, एतराज ये कि जब मुस्तहिक ने मुर्तहिन से जमान वसूल किया, मुस्तहिक ने, तो आपने हमें क्या कहा कि मुर्तहिन कीमत के बारे में भी राहिन पर रुजू करेगा और अपने दैन के बारे में भी राहिन पर रुजू, उस कीमत भी उससे ले लेगा उस रहन की, क्योंकि वो मुर्तहिन ने मुस्तहिक को दी है, और अपना दैन भी वसूल कर लेगा मुर्तहिन, क्योंकि मालूम हो इसके पास जो रहन हलाक हुआ वो रहन था ही नहीं, लिहाजा इस पर जमान भी कोई नहीं, तो दैन इसका अभी भी मौजूद है, तो अपना दैन भी वसूल कर लेगा राहिन से और कीमत भी वसूल कर लेगा। इस पर बास फुकहा ने इश्काल किया था, इश्काल यह किया कि भाई देखो मुर्तहिन पर अव्वलन जमान आया लेकिन फिर मुर्तहिन ने बिल आखिर यह जमान किससे लिया, राहिन से लिया, और तो और जिस पर जमान आता है वही मालिक होता है, तो गोया राहिन यहां पर भी उस चीज का मालिक हुआ, जब मालिक हुआ तो उसने अपनी चीज रहन रखवाई थी, जब अपनी चीज रहन रखवाई थी तो इसकी चीज मुर्तहिन के पास हलाक हो गई, जब इसकी चीज मुर्तहिन के पास हलाक हो गई तो मुर्तहिन पर जमान आना चाहिए, लिहाजा जब जमान आया तो उसने अपना दैन वसूल कर लिया, जब अपना दैन वसूल कर लिया तो अब उसको राहिन पर रुजू दैन के बारे में नहीं करना चाहिए, सिर्फ कीमत के बारे में रुजू करना चाहिए। बात समझ में आ गई, सिर्फ कीमत के बारे में रुजू करना चाहिए, दैन के बारे में रुजू नहीं करना चाहिए। तो उसका जवाब देते हैं साहिब हिदाया वगैरह और दीगर उलामा, वो फरमाते हैं कि देखो मुर्तहिन जो है यानी आमर, वो जैद से गाड़ी की कीमत भी लेगा और अपना दैन भी वसूल करेगा, यानी राहिन से, राहिन से मुर्तहिन राहिन से क्या क्या चीज लेगा, कीमत भी लेगा और अपना दैन भी लेगा। मुर्तहिन गाड़ी की कीमत राहिन से लेगा क्योंकि राहिन ने इसको धोखा दिया था, गैर की गाड़ी इसके सुपुर्द की थी, तो लिहाजा गाड़ी की कीमत के सिलसिले में किस पर रुजू होगा, जैद यानी राहिन पर, राहिन पर। और जो दैन है उसके बारे में भी रुजू किस पर होगा, राहिन। जवाब चल रहा है भाई क्यों राहिन पर क्यों रुजू होगा, कहते हैं इसलिए क्योंकि जब मुस्तहिक ने मुर्तहिन पर रुजू किया, तवज्जो है, उसने जब मुर्तहिन पर रुजू किया तो मुर्तहिन जब जमान अदा करेगा तो मुर्तहिन क्या बन गया, गाड़ी का मालिक, और फिर इस मुर्तहिन से गाड़ी की मिल्कियत मुंतकिल होगी किसकी तरफ, जैद की तरफ। तो यहां पर जो मिल्कियत है जो जैद की तरफ मुंतकिल हुई है वो मुअख्खर है अक़्दे रहन से। पहली क्या सूरत थी, जामिन किसको बनाया था सबसे पहले, एक सूरत क्या थी, राहिन को, राहिन को जब वो जामिन बनाता था तो राहिन को कब से मालिक शुमार करते थे, शुरू से, मालूम जब शुरू से मालिक है तो रहन रखवाते वक्त भी मालिक है, तो अपनी चीज रहन रखवाई। और इस वक्त उस मुस्तहिक ने जामिन किसको बनाया, मुर्तहिन को बनाया है, तो अव्वलन मालिक कौन बना उस चीज का, मुर्तहिन, फिर मुर्तहिन से मुंतकिल होगी किसकी तरफ, जैद की तरह मिल्कियत मुंतकिल होगी क्योंकि जैद से उसने जमान लिया है या नहीं, जैद से भी तो कीमत उसने लिया है, तो मुर्तहिन से फिर मिल्कियत मुंतकिल हो रही है किसकी तरफ, राहिन की तरफ, और यह मिल्कियत मुअख्खर है। ये मिल्कियत क्या है, मालूम हुआ जिस वक्त जैद ने गाड़ी इसके सुपुर्द की, गाड़ी का वो मालिक नहीं था, गाड़ी की मिल्कियत तो अभी मुर्तहिन से किसकी तरह मुंतकिल हो गई, राहिन की तरह अभी मुंतकिल हुई है ना। बात समझ, फर्क समझ में आ रहा है, फिर सुनो देखो यहां पर अगर मुस्तहिक ने मुर्तहिन को जामिन बनाया है तो मुर्तहिन गाड़ी की कीमत भी जैद से वसूल करेगा और अपना देन भी वसूल। गाड़ी की कीमत क्यों वसूल करेगा, क्योंकि धोखा किसने दिया उसको, जैद ने दिया था। मुस्तहिक बेचारे को गाड़ी की कीमत देना पड़ गई, उसके हाथ से मतलब 10 लाख रुपए उसके हाथ से निकले हैं बिला वजह ही, तो वो रुजू करेगा किस पर, जैद पर, कि तुमने मुझे गैर की गाड़ी रखवाई थी। तो धोखे की वजह से गाड़ी की कीमत का जमान अव्वलन पहले किससे वसूल किया गया, मुस्तहिक ने किससे वसूल किया, मुर्तहिन, और मुर्तहिन फिर किससे वसूल करेगा, राहिन से, क्योंकि उसने धोखा दिया था। और फिर यह भी याद रखो, जब मुर्तहिन जमान देगा तो मुर्तहिन क्या बन गया, मालिक बन गया, और फिर जब वो जैद से जमान लेगा तो जैद क्या बन जाएगा, बिल आखिर मालिक। लेकिन जैद की ये मिल्कियत मुअख्खर है भाई, क्या है, मुअख्खर है। ये मालूम हुआ रहन रखवाते वक्त जैद गाड़ी का मालिक नहीं था, बाद में मालिक बना है, बाद में मालिक बना है। मालूम हुआ मुर्तहिन ने जब कब्जा किया था तो उस वक्त उसने जैद की गाड़ी पर कब्जा नहीं किया, किसी दूसरे की गाड़ी पर कब्जा किया। जब भी उसने आकर मुर्तहिन से जमान लिया है ना, तो मुर्तहिन ने क्या किया है, गैर की गाड़ी पर कब्जा किया हुआ था और उसने आकर इससे जमान वसूल कर लिया। मालूम हुआ जैद की चीज तो इसके पास थी नहीं उस वक्त, और वो रहन तो तभी बनती अगर वो चीज किसकी होती, जैद की होती, तो रहन इसके पास था ही नहीं, तो इसके पास जो गाड़ी हलाक हुई है वो रहन नहीं थी भाई। बात समझ में आ गई, तो यहां हासिल कलाम ये कि उसने, जैद ने मुर्तहिन को धोखा दिया, उसने गैर की गाड़ी सुपुर्द की, तो गाड़ी सुपुर्द करना, यूं कहो गाड़ी सुपुर्द करना वो भी अक़्द रहन के बाद है, और नीज मिल्कियत जो मुर्तहिन से फिर मुंतकिल हो रही है किसकी तरफ, राहिन की तरफ, ये मिल्कियत भी क्या है, अक़्द रहन से मुअख्खर है, मुअख्खर। बात समझ में आ गई, जैद का गाड़ी देना मुर्तहिन को हवाले करना वो भी क्या है, अक़्द रहन से मुअख्खर, और मिल्कियत जो जैद की तरफ मुंतकिल हुई मुर्तहिन से जैद की तरफ मिल्कियत जो मुंतकिल हुई वो मिल्कियत भी क्या है, अक़्द रहन से मुअख्खर है। लिहाजा इस वजह से ये रहन बना ही नहीं, जब रहन बना ही नहीं तो जमान मुर्तहिन पर आया ही नहीं, जब जमान मुर्तहिन पर सिरे से आया ही नहीं तो उसने अपना देन वसूल नहीं किया। रहन पहुंचता तो रहन पर कब्जा किस चीज का होता है, वसूली का, रहन तो उसके पास कोई चीज आई नहीं, ये तो उसकी अपनी चीज थी, तो उस पर जमान नहीं, उसने अपना देन वसूल नहीं किया, तो देन भी अब क्या करेगा, जैद से वसूल करेगा। फर्क समझ में आ गया अच्छी तरह, चलिए भाई बाकी यहां तक बात समझ में आ गई अच्छी तरह, चलिए बस भाई। हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।